करूंगी। जो फ्रंट में चेयर्स होती हैं वो ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होती हैं, उनका टिकट ज़्यादा होता है अगर आप किसी इवेंट में जाएं, और प्लस एक अच्छा लगता है। फिर जो लेट आएंगे वो पीछे बैठेंगे ना, क्योंकि मुझे लगता है ये कुर्सी तो पक्की निषाद की है। आई डोंट नो इनकी क्या डील स्कूल से चल रही है या आपके साथ है, और ये दोनों आपकी हैं, किसकी इधर आज वो दूसरी नहीं है आप है, तो इसका मतलब कि आप लोगों ने अपनी अपनी जगह रखी हुई है। आगे बैठ के देखेंगे, आप खाली है ना, मुझे अच्छी नहीं लगती ये जगह। अगर आप दोनों आए, एक आगे आ जाए एक आगे, एक वो पीछे से जी। आप शहला नाम है आपका, शाहिदा क्या नाम है इनका, शाइस्ता। अगर आप आगे शाहीन के साथ आ जाएं, अगर कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है आपस में लगती है, आप देखेंगे एकदम आपका रूम खूबसूरत होगा। समटाइम फिर कोई लेट आए तो उसकी चेयर काफ़ी देर तक खाली रहती है ना, तो ये चीज़ मुझे पूरा वक्त बॉदर करती रहती है। लेकिन अब तो मैं आपको कह सकती हूँ ना, कह सकती हूँ ना। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह, रिकैप आपने किया या डिस्कशन, क्या प्रैक्टिकल चीज़ें सीख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। यही असल में इल्म वही है जो आपके मेरे अमल का हिस्सा बन सके और हमारे साथ जाए। आज हम इंशाल्लाह और भी बहुत ही खूबसूरत चीज़ें पढ़ने वाले हैं। दुआएं याद करें, पढ़ें कल की दुआ ज़रा सारे मिल के, शाबाश, देख के पढ़ लीजिए, आई डोंट माइंड। गुड, शाबाश। और इसके पढ़ते हुए मानी पे गौर हो रहा है, गुड अल्हम्दुलिल्लाह। कल आखिर में क्या पढ़ा था, वालदैन के हकूक, कुछ उस पे अमल किया, दुआ की उनके लिए, और किसी ने कुछ। जी, उनके नाम से सदका किया आपने, घर से इधर से निकलते हुए उनसे बात की, अल्हम्दुलिल्लाह। बस अब एक रह गया गैप इधर, ये अगली चेयर में इनके साथ कोई आप दोनों में से या इधर में से आना चाहे तो मोस्ट वेलकम, और फिर हमारी इंशाल्लाह तरतीब अच्छी हो जाएगी। आप दोनों आपस में नाराज़ तो नहीं है ना सिस्टर, आप इधर आ जाइए साइड में, जज़ाकअल्लाह खैर। और वैसे भी आप सीधे हाथ वालों में आ गई, तो आज हम शुरू करेंगे ज़ौजैन के हकूक। दुआ करें हम इसी पर ना सारा वक्त लगा दें, आपके इतने इश्यूज़ होने हैं कि अल्लाह की पनाह। बहरहाल चलिए, नखमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बादु, फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, रब्बिश्राहली सदरी व यस्सिरली अम्री वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली, रब्बी यस्सिर वला तुयस्सिर वतम्मिम बिल ख़ैर। अल्लाह ताला की रहमत से हम लोग इस्लाम ए टू ज़ी में इस वक्त मामलात पर हैं, और मामलात में से भी हम आदाब का टॉपिक किसी हद तक करके अब साथ ही साथ हकूक़ को भी शुरू कर चुके हैं। और हकूक़ बहुत सारे लोगों के हैं, लेकिन अगर हम हकूक़ को देखें तो उसमें हमने अभी तक मुआशरती हकूक़ देखे, उसमें अहले इल्म के हकूक़ और इसी तरह से जो हमारे हमसाए हैं, लेकिन इस वक्त आज हम ख़ानदानी हकूक़ की सीढ़ी पे कदम रख चुके हैं, और वो क्या है, वालदैन के हकूक़ के बाद ज़ौजैन के हकूक़, कि शौहर बीवी के क्या हक़ है। हकीकत है कि आज की दुनिया में लोग एक दूसरे का हक़ देने या ना देने के खौफ से बस दफ़ा शादियां नहीं कर रहे। यानी आज मेरी कई ऐसे लोगों से बड़ी बेतकल्लुफ़ी से बात हुई कि व्हाट स्टॉप्स यू टू गेट मैरिड। एक लड़का जिसके साथ आप इतने साल से रहती हैं, या आप उसको अपना बॉयफ्रेंड कहती हैं, या वट एवर, आप समझ ही गए होंगे कि नॉन मुस्लिम्स के साथ ही ये बात हो सकती है, मुस्लिम से तो इसका तसव्वुर भी नहीं किया जाता। तो जब मैंने उनसे ये बात पूछी तो उन्होंने इसका मुझे यही जवाब दिया कि नो शादी, एक ने कहा कि वेरी एक्सपेंसिव, वी कैंट अफोर्ड मैरिड, शादी नहीं अफोर्ड कर सकते। फिर मुझे लगा शायद ये पाकिस्तानी इंडियन शादी कि पाकिस्तान और इंडिया के तरीके से शादी करेंगे, लेकिन फिर मुझे लगा कि यहाँ भी शादी की काफ़ी अच्छी खासी रसूमात होती है और ख़तरे होते हैं। फिर किसी ने कहा नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत सी है ना, एक यंग लड़की थी, हमारे बहुत क्लोज, ये सारी बातें मोस्टली नेबर्स में और साथ रहने वालों में होती हैं। तो मैंने उनको कहा कि उनका एक बेबी होने वाला था, जब वो मुझे मिली तो बेबी हो रहा था। और किस्सा मुख्तसर, जब मैंने थोड़ी सी बात की, हम तो अपने हिसाब से पूछते हैं ना, तो वो बार बार कहती माई फ्रेंड इज़ कमिंग, माई फ्रेंड इज़ कमिंग। तो मुझे लगा कि इसकी दोस्त आ रही होगी इसकी हेल्प को, या इसकी ऐसी कैफियत है, वट एवर। लेकिन बाद में पता चला कि जिस लड़के को हम उसका शौहर समझते हैं, वो उसका फ्रेंड है। तो और बिल्कुल वो लास्ट डेज की प्रेग्नेंट थी लेडी। तो मैंने उससे पूछा कि रियली, यानी तो तुमने शादी नहीं की? कहती नहीं, कब से साथ रह रहे हैं? मे बी 2-3-4 साल से ना। तो मैंने कब आए? कहती वी कैन वी डोंट हैव मनी, वी डोंट हैव मनी, मनी नहीं है। तो फिर मैंने कहा, फिर बेबी हमारे सामने हुआ, बिल्कुल नेबर में हमारे। तो फिर उसको मैंने, उसकी माँ, उसके बाद सारे कुछ, यानी सारी बात का खुलासा ये है कि अभी तक शादी नहीं हुई। वजह क्या है? एक आध जगह पूछा तो मेरी जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि, मैंने कहा यू नो इस्लाम गिव्स वेरी मच टू मैनी राइट्स टू वुमेन, एक लड़की जब शादी कर लेती है तो सिक्योर होती है। तो मुझे उसके जवाब में, वो डेनिश थी शायद, हम जहाज़ में कहीं बात कर रहे थे, तो मुझे ना अपने डेनिश कानून सिखाने लगे थे, यू नो हेयर आर वेरी मैन टू मैनी राइट्स हेयर टू। यानी कि उसने जो मुझे कहानी सुनाई, उसका खुलासा क्या था कि इधर बॉयफ्रेंड होने के नाते से भी एक लड़का अगर एक लड़की के साथ रहता है और बच्चा हो जाता है तो बहुत सारे राइट्स हैं। तो मुझे लगा कि सिर्फ अल्लाह के कानून नहीं मानने ना, आहिस्ता आहिस्ता ना, किधर से नहीं पकड़ो उधर से पकड़ो, अपनी हालात को सही करने के लिए लोग ये इस तरीके से कवानीन बनाने पे मजबूर कर दिए गए हैं, इसके बावजूद अल्लाह के कवानीन को नहीं मानते। मैंने कहा कि आई एम वेरी मच सिक्योर। फिर जब किसी को ये पता चले, अच्छा आप लोगों की शादी इतने साल हो गए, आप इतने 10 साल से ये से इकट्ठे रह रहे हैं, ये वो, तो लोग बड़ा हैरान होते हैं ना। तो मैं जो चीज़ इस वक्त आपके सामने लाऊंगी कि ज़ौजैन के हकूक से पहले अगर आप ये देख लीजिए कि शादी करने के फ़वाद कितने हैं। कुरान में अल्लाह ताला ने लितस्कुनू इलैहा, कि मर्द अपनी बीवी से सुकून हासिल करता है। फिर अल्लाह ने इसको लिबासुल्लहुन वहुन्न लिबासुल्लकुम कहा, औरत और मर्द, शौहर और बीवी एक दूसरे के लिए जस्ट लाइक गारमेंट्स, कपड़े हैं। कपड़ा इंसान के मिजाज का अक्कास होता है। आप किसी की ड्रेसिंग से ही उसका मिजाज पहचान लें कि कौन किस मिजाज के अंदर से, और कौन कितना शाइस्ता और कितना उलझा हुआ है और कितना बेहंगम है। और इसी तरह से आप देखिए कि मवद्दतम व रहमा का लफ्ज़ आता है कुरान पाक में, सूरह रोम में। मवद्दत वुद से है, जिसमें सेक्सुअल डिज़ायर भी कह सकते हैं, इंटीमेसी कह सकते हैं, इमोशंस कह सकते हैं, यानी अमूमन जो जवानी की मोहब्बत होती है या शादी का शुरू में जो एक बेचैनी और बेताबी वाली मोहब्बत होती है। लेकिन फिर आगे उसके साथ रहमा कह दिया, रहमा के बुढ़ापे की मोहब्बत, कि चलो कोई अब कशिश नहीं है तुम्हें उसमें, उसको तुम में, और वो बीमार हैं, वो उसका जिस्म बेहंगम हो गया, वो बच्चों में लगी रहती हैं, ये है वो है दिस एंड दैट, तो लेकिन अब तुम उस पर रहम करो, वो भी बीमार है, तुम भी बीमार हो, तुम भी बूढ़े हो रहे हो, वो भी बूढ़ी है। तो आप देखते हैं कि बहुत सारे बूढ़े बूढ़ियाँ जो हैं वो अपने एक दूसरे की दवाइयों के ख्याल करते रहते हैं। तो क्या पता चला कि इस्लाम में शादी इज़ नॉट जस्ट अबाउट सेक्स। ये जुमला लिख लीजिए, शादी का मतलब सिर्फ सेक्सुअल डिज़ायर नहीं है, हाँ दिस इज़ अ बिग पार्ट ऑफ थिंग। क्योंकि एक मर्द के लिए उसके कपड़ों का इंतज़ाम करना, खाने का इंतज़ाम करना, उसके लिए घर को साफ रखना, ये माँ भी कर देती है, बहन भी करती है, बल्कि ज़्यादा खुशी से करती हैं माँ बहनें। लेकिन असल बात ये है कि जो ख्वाहिश एक मर्द एक बीवी से पूरी कर सकता है, वो दुनिया की किसी और औरत से पूरी नहीं कर सकता। यानी बीवी का अगर आप एक जुमले में लिख लीजिए कि शी इज़ द ओनली वन हु कैन फुलफिल द डिज़ायर्स ऑफ अ मैन। और निकाह का बंधन एक ऐसा बंधन है कि जिसमें ख्वाहिशात की तकमील भी हो जाती है और जज्बात को सुकून भी मिल जाता है। और हकीकत ये है कि शादी के बाद जो मोहब्बत पैदा होती है, ये बग़ैर शादी के हो नहीं सकती। नबी सल्लम ने फरमाया, दो जोड़ों के बीच में, यानी एक दो अजनबियों से, जोड़े नहीं, दो अजनबियों के बीच में जो चीज़ मोहब्बत पैदा करती है, निकाह उसमें सबसे आगे है। क्या पता चला कि पहले मोहब्बत का तसव्वुर दे देना और शादी ना करना, ये आज का कल्चर है। लव तो एट फर्स्ट साइट है, और रोमांस तो आप 12 साल की उम्र में और 13 साल में यू आर फ्री टू डू एनीथिंग, लेकिन शादी 18 साल तक नहीं कर सकते। इस्लाम में शादी के बाद ये जज्बात का उभरना और इन चीज़ों का आगे बढ़ना, ये इसका रास्ता वहाँ से बनता है। क्यों ऐसे होता है? क्योंकि चीज़ ही नहीं है, खाना है ही नहीं, तो भूख लगा दे और भी बातें होंगी, खाने की बातें ही करने लग जाए तो और भूख भड़केगी ना। खाना नहीं है, आप खुद भी देखते होंगे कि खाना सामने ना हो तो आप सारे दिन काम करते रहेंगे, जो ही सामने कोई चीज़ देखेंगे आपका हाथ चलने लगेगा। आज की सोसाइटी में ये बहुत ही ज़्यादा एक वर्स्ट थिंग दिखी, और वो क्या है कि भूख पहले लगा देते हैं और चीज़ इज़ नॉट अवेलेबल बचपन से। आप तो छोटे बच्चों को, आपको मुझे नहीं पता कि यूएसए में भी क्या रूल है, लेकिन यूरोप में एक से ज़्यादा जगह पे मैं ये चीज़ क्लोजली समझ भी चुकी, गवाहियाँ मौजूद हैं कि जिसको आप फ्री के कहेंगे वहाँ बारने हागे बोलते हैं नॉर्वे में, और ऑफ कोर्स यूके में डे केयर सेंटर्स और उससे ऊपर, यानी जिसको हमारी ज़ुबान में कच्ची पक्की केजी, केजी के बच्चे को बॉडी पार्ट्स दिखा दिखा कर एजुकेट करने लग गए। वी आर टीचिंग देम ह्यूमन बॉडी, ये को टीच करने वाली बातें हैं क्या? बताइए कि बच्चे को पॉटी ट्रेन माँ करती है या स्कूल करता है? बच्चे की जो हाइजीनिक ज़रूरतें हैं, टॉयलेट कैसे यूज़ करना, क्या करना, ये माँ का काम है या स्कूलों का काम है? आज माओं के काम स्कूलों ने ले लिए, और हमारे अपने साथी गवाही देते हैं जो खुद भी उसी इस मुल्क में रेस्ट हुए कम से कम, कि साथ जो चीज़ हमारे दौर में 7वीं 8वीं क्लास में बताते थे, 7th 8th ग्रेड में, वो अब हमारे बच्चों को 2nd 3rd ग्रेड में बताने लग गए। और मासूम बच्चे, 4 4 5 5 साल के बच्चे आके मामा से पूछते हैं, मामा इट्स ट्रू, मामा इज़ राइट, जो आज मुझे स्कूल में बताया गया, ये बताया गया, ये सच है, ऐसे ही होता है, बिलीव मी। और इससे बढ़ के बात बहुत आगे चली गई है। तो याद रखिए कि इस्लामी माशरे में शौहर और बीवी का ताल्लुक इज जस्ट लाइक एक नई बुनियाद डलना। एक खानदान की पहली बुनियाद कब डलती है? जब एक मर्द और एक औरत के बीच में एक माहदा, एक एग्रीमेंट होता है कि वो अल्लाह ताला के अहकामात के मुताबिक खुशगवार इज़दवाजी ज़िंदगी बरकरार रखेंगे। और यही माशरे का हुसन है। आप सूरत निसा 19 को देख लीजिए, और आप हज्जतुल विदा के मौके पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो बात जो तिर्मिज़ी 1163 में आपको मिलती है, आपने फरमाया कि खबरदार तुम औरतों से भलाई करो, वो तुम्हारे पास कैदियों की सूरत में है, तुम सिवाय इसके इनके किसी चीज़ के मालिक नहीं हो, मगर ये कि वो खुली और वाज़े बेहयाई और ऐसी बात करें, अगर वो ऐसा करें तो फिर बिस्तरों से उनसे अलग हो जाओ, फिर उनको ज़र्ब लगाओ। कुरान में ये सारी बातें भी हैं, हदीस में भी हैं। तो क्या पता चला कि इस्लाम में ये बहुत डिफाइंड किस्म की चीज़ है। इस पे अल्हम्दुलिल्लाह कम अज़ कम मैं अपने दिल को मुतमइन पाती हूँ कि जो मेरे दिल में होता है, मैंने इस पे बहुत बात की है। निकाह A to Z पूरी सीरीज़ है, दो इसके हिस्से हैं, बिफोर मैरिज क्या राइट्स हैं, क्या रेगुलेशंस है, क्या करना है, और आफ्टर मैरिज, दोनों को अलग अलग रखा हुआ है वेबसाइट पे, ये मौजूद है। फिर इसी तरह अगर आप वेबसाइट पे जाकर इसी टॉपिक को खोल कर देखें तो आपको कितने ही टॉपिक्स मिलेंगे, जिसमें पुरसकून घर, मेरा घर मेरी जन्नत, घरों को पुरसकून कैसे बनाया जाए। यूट्यूब पे मेरा लिए सबसे ज़्यादा जो लेक्चर सुना जाता है हमारे लेक्चर्स में से, वो हाउ टू मेक योर हस्बैंड हैप्पी, 60 टिप्स। बच्चियों की शादियां स्कूल में जब होती हैं तो उन शादियों के मौके पे लेक्चर्स होते हैं, तो आप उनसे या किसी और से फ़ायदा उठाएं, और जो लोग सुनते हैं उनको मेरे लिए A to Z पता है कि व्हाट आई थिंक अबाउट दैट कुरान और सुन्नत की रोशनी में। यहाँ आज क्या करूँगी, चूँकि बात हकूक की है, अब इसमें डिटेल्स तो नहीं, तो हम हकूक देखेंगे, नंबर एक मुश्तरका कॉमन राइट्स, फिर उसके बाद हम देखेंगे शौहर के क्या हैं और बीवी के क्या हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें कॉमन होती हैं, हमने आज उसको पीछे डाल दिया। तो सबसे पहली बात है कि कॉमनली दे बोथ आर ड्रेस टू अदर, हुन्ना लिबासुल्लकुम व अंतुम लिबासुल्लकुम, सूरत बकरा 187। यानी शौहर बीवी का और बीवी शौहर का लिबास है, मुराद जय के रासदान होते हैं, अमीन होते हैं, एक दूसरे से ख़यानत नहीं करते। लिबास देखिए कि आपके जिस्म के ऐप दूसरों को तो नहीं दिखाता ना, गर्मी सर्दी से बचाता है, तो शौहर बीवी दुख सुख के साथी होते हैं। फिर आप देखिए कि लिबास जो है, जिसकी जिसकी जो चॉइस होगी उसको देखकर आपको उसका टेस्ट समझ आएगा। एक लड़का अपने लिए शादी के लिए कैसी लड़की चूज़ कर रहा है और एक लड़की कैसा लड़का चूज़ करती है, इससे आपको उसका टेस्ट पता लग जाएगा। फिर इसी तरह से आप देखिए कि लिबास कद के साथ बढ़ता जाता है ना, आप छोटे थे तो छोटा लिबास था, बड़े हुए तो बड़ा हुआ। शौहर बीवी वर्क के साथ मोर कॉम्प्रोमाइजिंग हो जाते हैं, मोर अंडरस्टैंडिंग हो जाते हैं। हो सकता है शादी के शुरू के दिनों में आपकी उनसे कई बातें ना मिलती हों, उनको कुछ पसंद, आपको कुछ पसंद, वो रूठ गए, आपको समझ ही नहीं आई। दो दो दिन लड़कियां परेशान रहती हैं, हुआ क्या है, ये नाराज़ किस बात पे हो गए। अक्सर न्यूली कपल में ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती है, बीवियाँ कहती हैं हमें पता ही नहीं किस बात पे नाराज़ हो जाते हैं। इसी तरह हस्बैंड को नहीं पता होता ये मुँह क्यों सजाया हुआ इन्होंने, ये बेगम को क्या हो गया। शुरू में ऐसी ज़्यादा चीज़ें होती हैं, 2 साल दे दीजिए पुरसकून होकर, 1 साल तो अच्छा है लेकिन आजकल ज़रा हालात ज़्यादा ही नाजुक है, तो 2 साल दे दीजिए। 2 साल के बाद आपको उनके नाराज़ होने से पहले ही पता लग जाएगा ये अब नाराज़ होंगे, ये हो चुके हैं या होने वाले हैं, आप उनकी नब्ज़ पहचान लेंगी। जाइए अपने हस्बैंड से पूछ लीजिए। और मैंने अपने वाले से एक बात सीखी थी, तब मुझे अक्ल भी नहीं थी जब सीखी थी, वो कहते थे कि बीवी अपने हस्बैंड से 15 मिनट आगे होती है। अब क्या समझ आई क्या होती है, यानी 15 मिनट बाद, आफ्टर 15 मिनट, वट हस्बैंड रिएक्ट या वट ही नीड द वाइफ शुड नो। और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी पल्लू से बंधी हुई है ये बात। ये कोई जादू नहीं होता कि आप हस्बैंड पे कर दें, ये जादू की छड़ी भी नहीं होती। पहली बात है ये अल्लाह का काम है, शौहर के दिल में बीवी का और बीवी के दिल में शौहर का प्यार डालना सरासर अल्लाह का काम है। वो जो सूरह तौबा में सहाबे रसूल और सहाबा नबी सल्लम की मिसाल है ना, कि सारी दुनिया भी दे देते माल लफ्ता बैना कुलूबी, इनके दिलों में आप मोहब्बत नहीं डाल सकते थे जो इनको आपसे प्यार है। यानी नबी सल्लम के साथ सहाबा को जितनी मोहब्बत थी ना, तो अल्लाह अपने नबी को कहते हैं आप नहीं थे डाल सकते, ये मैंने डाला है। एग्जैक्टली यही बात ज़रूरी है कि शौहर बीवी में भी अल्लाह ही डालता है। कभी बहुत अच्छी बीवियों को बहुत ही चैलेंजिंग हस्बैंड्स मिल जाते हैं, और दूसरा मामला भी दोनों तरफ है। इस पे भी अपनी तकदीर की तरह राजी रहना चाहिए। बस लोग दूसरों के शौहरों को बहुत कोऑपरेटिव देखकर समझते हैं कि ये चूँकि ऐसे शौहर हैं इनके, तो फिर ये तो ऐसी होंगी। गलत बात है। देखिए आप तस्वीर का एक रुख देखते हैं, दूसरा नहीं देखते। यू आर लुकिंग अपेरेंटली, यू डोंट नो द इनसाइड व्हाट इज़ द थिंग। और टाइम टेकन, इट्स टाइम टेकन, बिलीव मी, क्या तय्यबात उल तय्यबीन और अल खबीसात उल खबीसून। सूरत नूर में है तो वो अब्दुल्ला बिन उबई और उसकी बातों चीतों के बारे में और सारी तोहमत की जो बातें थी, लेकिन हस्बैंड वाइफ के अंदर 80% तो यही रूल है। पाक मर्दों को अल्लाह पाक बीवियाँ देता है, नापाक को नापाक देता है। और ये चॉइस है, लातन के अल्लाह ताला कहते हैं लातन के हिल मोमी अल्ला मोमिना, नहीं निकाह करता, ये निकाह नहीं करो। वो बहुत ही, मैं उन फिकों में नहीं जा रही, उसकी दोनों तफसीरें मौजूद है। नहीं करता मर्द किसी जानिया से निकाह, मर्द मोमिन मर्द, और या ना करो, हुक्म भी है खबर भी, टेस्ट ही नहीं मिलता। आपका बच्चा इतना अच्छा नेक नमाजी, निगाहें झुकाने वाला और इज्जत को संभालने वाला, वो कैसे एक बेपर्द और ऐसी लड़की से शादी करने की ख्वाहिश रखता है जिसको सब देखे, जो नमाज भी ना पढ़े। इज़ नॉट पॉसिबल। सेम थिंग आपकी बेटी, माशाल्लाह आपने उसको बहुत बाहया तरीके से पाला है, वो कैसे किसी ऐसे मर्द के साथ शादी कर ले जो नमाज भी नहीं पढ़ता, और हो सकता है कि उसके दूसरों के साथ ताल्लुकात भी हों। यू अंडरस्टैंड द पॉइंट, ये होता ही नहीं है, इट डजेंट हैपन। लेकिन जब आइडियल हालात नहीं होते, जैसे अब हमारा पिछली पूरी सदी दैट वॉज अन आइडियल सेंचुरी ऑफ द मुस्लिम्स, अब इसमें ऐसे रिश्ते हुए, माँ बाप ने गलत किया। आज कई ऐसी तहज्जुद गुजार औरतें हैं जिनके शौहर एक नमाज भी नहीं पढ़ते, और पाक दामन औरतें निगाह नहीं उठाती, जानी मर्द हैं, शराबी मर्द हैं। 35 साल से एक औरत अपने मर्द के पास रह रही है और आखिर मेरे पास आकर कहती है कि एनफ इज़ एनफ नाउ। और जब सारी कहानी सुनी, मैंने कहा आप ये बात 2 साल बाद क्यों नहीं आई शादी के, जब आपको पता लगी थी, जब आपको 5 महीने 3 माह पहले बात पता लगी, क्यों नहीं आई? नहीं, खानदान, बच्चे, माँ बच्चे तो तब नहीं थे, माँ बाप की इज्जत, भाई बहन, अब क्या हुआ? अब बस हो गई है। पहले तो मैं और मेरे बच्चे भुगतते थे, उनके सामने गालियाँ पड़ती थी, अब दामाद के सामने झगड़ा होगा, अब बच्चों के सामने जब वो गंदी हरकतें करेंगे या करेंगे, तो ये गलती आपकी है। हमारे एक बहुत, हमारे सेटअप में, इंडो पाक कहूँ कह लें या मशरकी कह लें, इसमें एक बहुत बड़ी गलती है कि बच्चियों को घर चलाना निभाना सिखाते हैं, बट घर छोड़ने का तरीका नहीं सिखाते। इफ इट हैपन्स व्हाट शुड यू डू? और बच्चियाँ गलत तरीके, गलत रिश्ते माँ बाप ने जोड़े, बाहर का रिश्ता देकर रिश्ता कर दिया, वहाँ के पता चला उसकी तो 4 दोस्त हैं, उसके तो 1-2 बच्चे भी हैं, अब क्या करें? चुप चुप चुप, पीछे कोई नहीं, किसके पास जाएंगे? भाई होंगी, भाभियाँ होंगी, और इस वक्त जुल्म की चक्की में पिस रही हैं ऐसी औरतें। फिर आखिर जिन मुल्कों में आप बैठे हैं, वो तो माँ बाप से ज़्यादा प्यार करते हैं आपसे, वो दिखाते हैं, वो कहते हैं कम हेयर, वी विल सपोर्ट यू, हम तुम्हें घर देंगे, मियाँ पैसे नहीं देता, ये पकड़ो पैसे। आज इस वक्त इतना बड़ा इशू है यूरोप में कि एक औरत शौहर के घर में रहे तो उसको क्या मिलेगा। मसलन 10,000 करोन मिसाल है मर्द की पे है औसत, मिसाल दे रही हूँ आपको। बीवी को तो 1,000 दे देगा पॉकेट मनी, 2,000 दे देगा, हालांकि इतना भी नहीं दे पाएगा। अब वो बीवी मर्द की बातें भी सुनेगी, उसके मर्जी से घर से निकलेगी, जाएगी आएगी, लाइबिलिटीज इट्स गुड, बट जब पाबंदियाँ इसको कह लेंगे तो बैड है, प्रोटेक्शन कह लेंगे तो इट्स गुड। देखिए एक है प्रिजनर, इफ़ यू फील यू आर प्रिजनर तो आपको कुछ बोझ लगेगा, और इफ़ यू फील कि इट्स योर प्रोटेक्शन, डोंट गो आउटसाइड, बाहर बहुत ख़तरा है, तो आपको प्रोटेक्शन लगेगी। जब सोच ये दे दी जाती है तो वो लड़कियों को फिर क्या लगता है, शौहर 2,000 देता है, आज इसको छोड़ के जाके गवर्नमेंट के पास जाएंगे, वी कैन स्टे विद, मेरा हस्बैंड मारता है डांटता है ये है वो, आपको क्राइसिस सेंटर देंगे, आपको 10-12 हज़ार क्रोन का किराए का घर देंगे जो गवर्नमेंट पे करेगी, 10,000+ क्रोन आपको पॉकेट मनी देंगे, सपोर्ट करेंगे आपको, और आप कहेंगे वाह हाथ में आज तक 1,000 से ज़ायद मियाँ ने दिया नहीं, यहाँ तो 10,000 का चेक आ गया, चेक तो नहीं आते वहाँ, किस्सा मुख्तसर, जो वहाँ के लोग सुनेंगे उनको मेरी बातें 101% समझ आएंगी, आपको नहीं आएंगी। इतना मशहूर हो गया ये बात कि आप औरतें सिर्फ इसलिए अपने शौहरों के साथ नहीं रह रही कि बाहर ज़्यादा मिल रहा है, फिर बाद में धक्के खाती हैं, 5-6 साल धक्के खा खू के फिर वो कहती है आओ जॉब करो, हम तुम्हें रोज़ कैसे खिलाएं। लेकिन ना मियाँ को तो रोज़ कुछ आपसे मिल सकता है ना, मिसाल है हर दिन आप अपने मियाँ के लिए पुरसकून जरिया तो बनी ना, तो वो अगर आपको रोज़ अगर 100 रुपये भी दे दे तो इट्स ओके, उसको साथ साथ ही मिल रहा है, रिफंड हो रहा है, इन्होंने आपको कहाँ से देना है, देंगे हमारे टैक्सेस से, टैक्स आप देंगे, पैसे वो आपके औरतों को बच्चों को खिलाएंगे। इस वक्त यूरोप में एक बिग बिग पार्ट ऑफ द टैक्सेस इज गोइंग टू क्राइसिस सेंटर, जहाँ औरतें और बच्चे, बच्चों को वो खुद लेके जा रहे हैं बाहर, ये तो इशू शुरू हो गया ना कुक का, तो इतने पोल खुलेंगे कि आप समझ ही नहीं सकते। बच्चे मुसलमानों के गवर्नमेंट खुद पकड़ रही है, आप अपने बच्चे को टच नहीं कर सकते, ऐसे नहीं कर सकते, बच्चा ले जाते हैं स्कूल से आप आए तो पुलिस पहले खड़ी होती है, क्योंकि आपने पार्किंग लॉट में बच्चे को कहा था घर चलो तुम्हें मारती हूँ, और वो मार को किल कहते हैं, आई विल किल यू, और बच्चा बच्चा हर माँ बच्चे को नहीं डांटती, यानी एक माँ रियल स्टोरी है कि अपने बच्चे को स्कूल से ले रही है, बच्चा बैठ नहीं रहा, कहती आज घर चल तुझे मैं तुझे कत्ल करती, कह दिया होगा आई डोंट नो कत्ल गई या होगा, तभी मार को शायद वो हिट ही कहते हैं, या आई विल हिट यू या आई विल किल यू। वो बच्चे की माँ की बात किसी दूसरे ने सुनी जो आई हुई थी अपने बच्चों को ले, जस्ट शी कॉल फ्रॉम देयर पुलिस, बार ने वन कहते हैं ऐसी पुलिस को, वन बार ने मीन बच्चा, वन पुलिस, अच्छा जी, तो उन्होंने उसको बता दिया कि ये माँ अपने बच्चे को कह रही है कि मैं तुम्हें घर जाके कत्ल कर दूंगी या मार दूंगी। वो औरत घर पहुंची, उसके डोर पे पुलिस खड़ी थी, दे टुक ऑल द किड्स कि तुमने इनको घर जाके कत्ल कर देना या मारने दे दो हमें। क्या सुनाऊँ मैं आपको, क्या इतने छाले हैं, मैं तो इस टॉपिक पे बोलती भी नहीं हूँ क्योंकि मेरा दिल गलने लगता है। इस वक्त हमारी नस्लें वो फिरौनियत के चुंगल में तो नहीं है ना कि युजब हो ना बना कु यस्तू ना निसा हो कुम, आज ये मसला इस तरह हमारी औलादें ले रहे हैं, और 90% मुस्लिम बच्चे, 90%, और बात है इतना बच्चा है और इतना सा स्क्रैच देख लें अगर अगले दिन उनकी बाजू पे, उसको ऑफिस में बुलाते हैं, कैंडी देंगे, चॉकलेट देंगे, ये क्या हुआ था, हु हिट यू, मॉम हिट यू, बाप हिट यू, बच्चे को क्या लगे, माँ का नाम देगा माँ की जेल में, बाप का देगा बाप जेल में, ये हकूक नहीं है। इस्लाम ने जो हकूक व फ़राइज़ का खूबसूरत सिस्टम दिया है, हमारे कल्चर में कहते हैं माँ से ज़्यादा प्यार जतलाए वो फब्बे कुटन होता है, आपसे माँ से ज़्यादा कोई प्यार कर सकता है, आप हकूक और राइट्स और रेगुलेशंस के नाम पे एक्सट्रीम पे चले गए। इस्लाम ने क्या किया था, कुछ हकूक कुछ फ़राइज़, गिव एंड टेक, लो और दो, कभी लेता है बंदा कभी मुसलसल दे रहा होता है फिर इकट्ठा ही ले लेता है। मैं कहती हूँ शादी के शुरू में 2 साल दें 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 दें, सारी ज़िंदगी लें लें लें, वल्लाही ये जो आज गर्दनें तनती है साहबा में से कभी नहीं हुआ था कि आके खड़े हो जाए अल्लाह के नबी हमारा क्या हक है, आके क्या पूछते थे, माँ हक ज़ौजती, हमारी बीवी का हम पे क्या हक है, उनको गम ये था कि कहीं हम ना पकड़े जाएं, क़यामत के दिन हमारा हाल ना बुरा हो जाए। आज बिल्कुल अपोजिट है, जिनसे हकूक लेने उनको तो तैयार नहीं किया गया, और जिन्होंने मांगने उनके हाथों में आपने स्लोगन्स पकड़ा दिए, तो आज जुल्म हुआ। इस्लाम शौहर बीवी को एक दूसरे का लिबास करार देता है, गर्मी सर्दी कहाँ नहीं होती। मुझे बताइए आप इतने बड़े ऐसे ही हो गए, मार खा के नहीं हुए, डांट खा कर नहीं हुए, क्या आप इस मुल्क में, मुझे नहीं पता बच्चों को मारना जुर्म है या कितना को मार सकते हैं, हैं? जुर्म है ना? आपको पड़ी मार के नहीं पड़ी? रियल स्टोरी है कि एक बच्चे को, या फिर इस तरह के माँ बाप को जिसको आप अपनी जुबान में कहते हैं ना कि नाक से लकीरें लगवाते हैं, एक दफा उनका नाम आ जाए किसी रिकॉर्ड में, वो 3 माह तक तो उनको मुस्तकिल बुलाते हैं मीटिंगों में, बच्चे पे नजर रखते हैं, रोज बच्चे से पूछें या जब एनी टाइम दे कैन कम एट योर होम टू सी व्हाट व्हाट इज गोइंग ऑन। फिर दूसरी मीटिंग होती है, फिर तीसरी, 3-4 माह में जब वो कहानी पूरी हो जाए तो फिर वो केस आपका ड्रॉप करेंगे, उसके बाद एक नया केस बन जाएगा और फिर आप बच्चे को बाहर नहीं ले जा सकते। एक ऐसा कपल था और जो भी हुआ, यानी बच्चे, फिर बच्चे भी ब्लैकमेल करने लग जाते हैं। अब बच्चे कहने लग जाते हैं कुछ, आई विल कॉल बाने मान। एक बाप ने जब इन सारे केसों से जान छुड़ाई, जिस दिन वो फ्री हुआ टिकट कटाई पाकिस्तान ले गया और एयरपोर्ट पे जूता उतार के कहने लगा, अब बुला किसको बुलाते, बिलीव मी इट हैपेंड, बिलीव मी। ये बात सच्ची बात है, दुख की है, हमारी नस्लें अब हमारे अपने ही हाथों से जा रही हैं। ये तो एक टॉपिक छेड़ दिया किसी दर्स में ना कि नस्लें कहाँ जा रही हैं, तो आप देखेंगे पानी जैसे हाथों से निकलता है ऐसे हमारे बच्चे हमारे होते हुए हमारे नहीं है। वो सोचते हैं यू आर टू मच, आप हम पे ज़्यादा जुल्म करते हैं, आप तो कुछ ज़्यादा ही सख्त हो गए, दिस एंड दैट। तो इस्लाम ने बैलेंस के साथ रखा है, कुछ आप दीजिए कुछ आप लीजिए। दूसरा मुश्तरक हक जो शोहर बीवी के एक दूसरे पर है, एक दूसरे को सुकून दें, पुरसकून और खुशगवार जिंदगी बनाने में हस्बैंड एंड वाइफ दोनों का बराबर का हिस्सा है। सच्ची बात हो, खरी बात हो, सीधी बात हो, मामलात में सच्चाई रखिए, दिल से इखलास और मोहब्बत रखिए। अल्लाह के नबी सल्लम ने खुतबातुन निकाह के अंदर जो बात की है, अगर आप उसी को देख लीजिए तो तकवा। सूरत निसा की पहली आयत, निकाह का खुतबा, या युहन्नासुत्तकु रब्बकुमुल्लज़ी खलकुकुम, नहीं, या युहन्नासुत्तकु रब्बकुम, आया लोगो डर जाओ अपने रब से। खुतबा निकाब में सूरत निसा की पहली आयत पढ़ी जाती है, 2 दफ़ा तकवा का जिक्र है, शुरू में भी और वत्तकुल्ला एंड पे भी है। क्या पता चला कि दोनों में तकवा होना चाहिए, एक दूसरे का हक है। जब तक आप एक दूसरे के लिए वो ना पसंद करें जो आप अपने लिए करते हैं, ताल्लुकात अच्छे हो नहीं सकते। बुखारी की रिवायत 13 के एक दूसरे मोमिन दूसरे के लिए वही पसंद करता है जो अपने लिए करता है। फिर इसी तरह तीसरी चीज़ जो मुश्तरक है दोनों के बीच में, वो मोहब्बत। शोहर को बीवी से और बीवी को शोहर से मोहब्बत होनी चाहिए, इसी को रहमत कहते हैं, इसी को फिर मवद्दत और बाकी चीज़ों में जो मैंने अभी आपको बात बताई। बुखारी का हवाला नोट कर लें, 5236 और अबू दाऊद 2578। यानी दोनों मोहब्बत करें, सुकून हासिल करें, सूरत रूम 21, और बुढ़ापे में रहमत, जवानी में मवद्दत, ये दोनों हैं। फिर इसी तरह से चौथा मुश्तरका हक क्या है, हुस्ने अखलाक। शौहर को बीवी से और बीवी को शौहर से अच्छे अखलाक से पेश आना चाहिए। और आपने फरमाया, मैं अपनी बीवियों के हक़ में सबसे अच्छा हूँ, तिर्मिज़ी 1162। यानी अगर बीवी गाली नहीं दे सकती ना शौहर को, तो शौहर को बिल्कुल हक नहीं है कि वो भी बीवी को गाली दे। बीवी शौहर को मार नहीं सकती ना, तो शौहर को भी हक नहीं है कि वो बीवी को मारे। याद रखिएगा, ये एक फितरी सी बात है। इसमें ये हमारा इंडो पाक कल्चर तो हो सकता है कि आप ना बोलें वो ना कर ले, और मर्द तो ऐसे ही होते हैं, मर्द तो गालियाँ ही देते हैं, हमारे भी शौहर देते थे, तुम क्यों नहीं बर्दाश्त कर रही ये वो, तो ये फजूल बातें हैं, इस्लाम इसको नहीं मानता। अगली चीज़ सुनकर आपने बहुत ही उछलना है, लेकिन फिर भी क्या है, और वो है घर का काम। जी, घर के काम काज में शौहर और बीवी को एक दूसरे से तआमुन करना चाहिए। नबी सल्लम अपने कपड़े धो लेते थे, पैवंद लगा लेते थे, झाड़ू लगा देते थे, बकरी का दूध धो लेते थे, और ये तआमुन मोहब्बत बढ़ाता है। शौहर बीवी निकाह के वक्त पे कुछ डिसाइड नहीं करते, जॉब डिस्क्रिप्शन, ड्यूटी लिस्टें नहीं होती कि तुम क्लीनिंग इंचार्ज हो या तुम कैंटीन इंचार्ज हो और तुम ऑफिस इंचार्ज हो, ये प्यार और मोहब्बत की बातें होती हैं। जितना ज़्यादा एक दूसरे के साथ मामला हो उतना अच्छा है। छठा हक जो दोनों का म्यूचुअली अंडरस्टैंडेबल है, वो है मामलात में नरमी। शौहर को बीवी से और बीवी को शौहर से नरमी इख्तियार करनी चाहिए, सही मुस्लिम 6602। सातवां हक दोनों का एक दूसरे पर क्या है, कि दोनों के चेहरों पे शगुफ्तगी हो, स्माइली फेसेस हो, अब तो हो ही जाएंगे। इस कोर्स में ना हुए तो फिर मेरा लिए एक नया कोर्स, माइल कोर्स करवाना पड़ेगा। शगुफ्तगी हो, देखने वाली की या देखने वाले की थकन उतर जाए। अपने आप को एक क्राइटेरियन पे रखे। खूबसूरत औरत वो है कि उसका शौहर उसको देखे तो उसके चेहरे पे स्माइल आ जाए, और खूबसूरत शौहर कौन है, अच्छा कामयाब शौहर कौन है कि बीवी उसको देखे तो एकदम उसके चेहरे पे स्माइल आ जाए। ये बहुत अहम ज़रूरत है। बिलीव मी, अगर आप ये गुर इस्तेमाल कर लें, कई झगड़े और लड़ाइयाँ ख़त्म हो जाएंगी। एक दूसरे का ख्याल रखने के लिए हैप्पी फेसेस, ये चिढ़ वाले, तनकीद वाले, गुस्से वाले, शिकवों शिकायतों से भरे हुए चेहरे, ये मज़ीद हालात को ख़राब करेंगे। बड़े से बड़ी लड़ाई आपके चेहरे के स्माइल और हंसी और शगुफ्तगी से दूर हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। फिर इससे कुर्बत भी होगी, मोहब्बत भी होगी। फिर इसके बाद आठवां, म्यूचुअल राइट या बाहमी हकूक पे से एक चीज़, बाहमी अदब व एहतराम। अदब और रिस्पेक्ट लिख लीजिए, दे बोथ शुड रिस्पेक्ट ईच अदर। यह इस रिश्ते को मजबूत करेगी, यानी दोनों आपस में अच्छे तरीके से करें। अब देखिए, मैंने आपको 8 पॉइंट्स दिए ना, 8 पॉइंट्स कौन से हैं जो दोनों को करने हैं। अगर ये सारे ठीक हो जाएंगे ना, तो इसके बाद जो अगले हैं ना, ये इसमें 98% वैसे ही ठीक होंगे। पहले शोहर के हकूक देख लीजिए कि शोहर के हकूक के हैं। नंबर एक के जो अच्छी बीवियाँ होती हैं वो सादतमंद होती हैं, कान एतात, नाफरमानी, अल्लाह ताला की नाफरमानी के सिवा अपने शोहर की हर बात को मानने वालियाँ होती हैं। सूरत निसा 34 और तिर्मिज़ी, बल्कि बुखारी लिख लीजिए, 3322। ये आवाज़ कहाँ से आ रही है? किसी का फ़ोन है शायद, चेक कीजिए आप सब प्लीज़। मैंने तो अपना देख लिया जी, वाइब्रेशन पे भी हो ना तो ये थोड़ी सी इस तरह की मिसहैपनिंग होने लगती है। शौहर के हकूक में क्या कि बीवी फरमा बरदार हो, सूरत निसा 34 करना पड़ेगा। ये कैसे हो सकता है कि आप कहे कि नहीं जी मैं फरमा बरदार हूँ तो वो ना हो? देखिए, फिर वही बात आ जाती है कि जब आप फरमा बरदार होंगे तो वो खुद भी आपकी बात मानेंगे इंशाअल्लाह ताला। फिर बुखारी 3427 इसका रेफरेंस लिखना चाहें लिख ले। दूसरी बात, जो शोहर का हक है वो है कि बीवी अपने शोहर के माल, इज्जत और घर की हिफाजत करे। सूरत निसा 34 ही है और सिलसिला तो सही है 1203। यानी बीवी को फजूल खर्च नहीं होना चाहिए, शोहर के पैसे और अपने ही घर वालों के तोहफे ना हो, ऐसी जगह पे शोहर का माल ना खर्च करे जहाँ वो पसंद नहीं करता। और इसी तरह इज्जत से मुराद ये कि औरत अपनी इज्जत की हिफाजत करे, हो बीवी अब शोहर की और उसकी मोहब्बत किसी और से, और ये नहीं होना चाहिए। और इसी में फिर तीसरी चीज़, बच्चे भी हैं, औरत अपने शौहर के बच्चों की बेहतरीन तरबियत करे, ये भी शौहर का हक है। फिर उसके बाद शौहर के हकूक में क्या है कि बीवी की नज़रें किसी और मर्द पर उठे ही ना, यकदुदना मिन अबसारे हिन्ना, सूरत नूर 31। यानी औरत के दिल, दिमाग, आंखों, निगाहों में कोई दूसरा मर्द ना हो। इवन शादी से पहले का कोई मामला था, ख़त्म, निकाह के साथ सारे मामले टूट गए। फिर अगली बात है कि बीवी, शौहर का ये हक है कि उसकी बीवी नामहरम मर्दों से तन्हाई में, दूसरों के सामने, फ़ोन पे, अकेले में, कहाँ भी मीठी आवाज़ से बातें करती फिरे। यानी बात तो की जा सकती है, सूरत अल अहज़ाब 32 आप सब जानते हैं, ला यानी अपनी आवाज़ को दबाओ नहीं, मिठास नहीं पैदा करो। फिर इसी तरह से औरत की ज़ाती चीज़ों में बीवी दिलचस्पी ले। हज़रत आयशा घर के काम करती थी, अल्लाह के नबी की कंघी करती थी, आपके सर में तेल लगाती थी। यानी आप कह लें कि शौहर का ये हक है कि बीवी उसकी पर्सनल चीज़ों का ख्याल रखे। अगर शौहर आपको कहते हैं कि आप मुझे कपड़े निकाल दें या अगर ब्रश पेस्ट निकाल दें तो आपका ये मेरा तो हक काम ही नहीं है, तो देखिए ये कोई बातें लिखने या बताने वाली तो नहीं होती। केयरिंग कर लीजिए, वाइफ शुड बी केयरिंग। फिर नेक्स्ट क्या है कि बच्चों की ज़रूरियात। आप देखिए कि फितरी सी बात है कि मर्द बाहर की दुनिया में काम करेगा ना, कमाएगा, सारा दिन बाहर रहेगा, थका हारा आएगा, 5 वक्त मस्जिद में जाके नमाज़ पढ़ेगा, कुछ कम्युनिटी वर्क करेगा। अब आप उसे कहें जी अच्छा जी सारा दिन मैंने बच्चों के पैम्पर धोए हैं, बदले हैं, तो अब आप रात को बदलिए, ये तो गलत है। आज ये बातें सुनने में है, प्रैक्टिकली ये बातें मौजूद है। बीवियाँ कहती हैं इसका भी बच्चा है, मेरा भी है, दिन में मैं फीडर बनाती हूँ, मैं पेम्पर चेंज करती हूँ, रात में आप करें, तो आप तो 7 दिन में सो भी जाती हैं, आप रात को सो के उठ के अगले दिन फ्रेश हैं, वो काम पे कैसे जाएंगे? हमारे बड़े जो बात हमने सुनी, घर भी छोटे होते थे, जब तक छोटी उम्र का बच्चा होता था ना, इवन नर्सिंग एज में, मर्दों को अलग दूर कमरों में सिलवाती थी, बच्चा उस कमरे में नहीं सोता था जिधर बाप सोएगा। क्यों? कि माँ को भी फिक्र है घर वालों को कि इससे सुबह उठ के काम पे जाना है। अब एक बच्चा सारी रात रोए तो सुबह उठ के दोनों ही रो रहे होते हैं, हाय आज इसने हमें सोने नहीं दिया। फजर पे कैसे जाएगा मर्द? 7 बजे उठ के जॉब पे कैसे जाएगा? बिजनेस मीटिंग कैसे अटेंड करेगा? बीवी को अपने मर्द को हर लिहाज से सेटिस्फाइड करना चाहिए। आप सो जाइए, मैं इसको लेकर दूसरे कमरे में जाऊंगी। ये जब हकूक का एक हमें शोशा दिया ना, तो उसमें फिर कुछ ज़्यादा ही होने लग गए। फिर उसके बाद देखिए, शौहर के रिश्तेदारों के साथ यानी ससुराल, वो एक रवैया इख्तियार करे जो अपने शौहर से, वो अपने माँ बाप के बारे में मुतवक्के है। सही बुखारी 893, ये अलग से भी आगे टॉपिक आ रहा है, फिर उधर देख लेंगे। फिर अगली चीज़ है कि शौहर का ये हक है कि बीवी नाशुक्री से बचे। आपने फरमाया कि जहन्नुम में कसरत औरतों की हैं, और वो अल्लाह की नहीं शौहरों की नाशुक्री की वजह है, बुखारी 304। फिर इसके बाद बीवी, शौहर का ये हक है कि बीवी ज़्यादा वक्त घर में रहे, बिला ज़रूरत बग़ैर इजाज़त घर से ना निकले, अलहज़ाब 33, कर नफ़ी बुयूतिकुन। और इसी तरह से शौहर का ये हक है कि उसकी बीवी उसको हर मुमकिन खुश रखने की कोशिश करे, इल्ला ये कि अल्लाह की नाफरमानी हो या कोई गलत काम हो। चलिए गुस्सा दूर करिए, बीवियों के हकूक भी सुन लीजिए। पता चला कि आप कह रहे हैं मर्दों के हकूक हैं, तो आप देखिए कि मैंने आपको शौहरों के कितने हकूक बताए हैं, गिने आपने? आपने अपनी मर्जी से 12 लिख लिए, मैंने 5 लिखाए हैं। कुछ चीज़ें उसकी रूटी तफसील थी, लेकिन आपके 14 हकूक हैं उन पे। खुश? आपको ज़्यादा मिल रहा है उनसे? जी, बीवी के हकूक बहुत सारे हैं। फर्स्ट थिंग, शौहर को अपनी बीवी के साथ उम्दा तरीके से रहना चाहिए। आशीरू हुन्न बिल मारूफ, सूरत निसा आयत 19, और बुखारी 3331, और मुस्लिम 3650। यानी बीवी को अच्छे रंग में रखे। आशीरु हुन्ना में इब्ने अब्बास थे, तो वो जब रात को सोने का इरादा करते, साफ़ सुथरे कपड़े पहनते, खुशबू लगाते, फिर उसके बाद कहते, जिस तरह मैं चाहता हूँ कि मेरी बीवी मेरे लिए एहतमाम करे, मेरे लिए तैयार हो, उसका भी ये दिल चाहता है, तो मैं उसके लिए तैयार हुआ हूँ। और फिर ये आयत पढ़ा करते थे, आशीरु हुन्ना बिल मारूफ, बीवी के साथ अच्छा मामला रखना चाहिए, उसको खुश रखें। और याद रखिए कि एक मर्द की बहुत बड़ी दौलत बीवी है। जैसे शुरू में जिक्र किया कि एक ख्वाहिश ऐसी है जो और कोई और उसकी पूरी नहीं कर सकता, और वो ख्वाहिश मर्दों पे गालिब होती है। और अगर गालिब है और अगर बीवी ना हो तो क्या हो? मुझे एक कॉल याद आ रहा है हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हो का, बहुत ही खूबसूरत, अभी याद ज़ुबानी बता रही हूँ, लेकिन उसका ख़ुलासा क्या था कि जब तुम्हें अपनी बीवी पे गुस्सा आए, आ सकता है, बुरी बीवी कोई गलत काम करे, नाफरमानी करे, आपकी उम्मीद पे पूरी ना उतरे, तो फिर तुम चंद बातें सोचो। धोबन कौन है? कपड़े कौन धोती है तुम्हारे? तुम्हारी बाबरचन कौन है? तुम्हारे बच्चों की आया कौन है? और तुम्हारे दूसरे काम सारों का कौन करती है? जब तुम्हें अपनी इतनी ज़रूरतें एक औरत से पूरी होती मिलेंगी ना, तो तुम्हारा उस पर गुस्सा ख़त्म हो जाएगा, बिलीव मी। और अल्लाह के नबी ने भी कहा, बल्कि कुरान में आता है, वन 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 तक रहू शयन बहु फहुआ खैरुल्लकुम, वसान तक रहू शयन बहुआ खैरुल्लकुम। तुम्हें कोई चीज़ बुरी लगती हो सकता है उसमें अच्छाई हो। आपने फरमाया जब तुम किसी को अपनी बीवी में कोई खूबी ना लगे, तो कोई उसकी अच्छी बात देख ले, कुछ तो होगा ना। तो ये एक अल्लाह ताला की तरफ से नेमत है। आपने फरमाया कि एक मर्द की बेहतरीन मता उसकी नेक बीवी है, सही मुस्लिम 3649 और बुखारी 1974। यानी सबसे बड़ी दौलत एक मर्द की वो बीवी है जो दीन में उसकी मुआविन होती है, बहुत अच्छी है। तो लिहाजा अल्लाह ताला ने बीवी के बहुत सारे हकूक रखे। अल्लाह के नबी अपनी, आपके लिए, मेरे लिए, सबके लिए रोल ना मॉडल हैं, नमूना हैं, बुखारी 4750। अल्लाह के नबी सल्लम अपनी सारी अजवाज के घर में जाते, उनके पास बैठते, उनके हालात मालूम करते थे, फिर जिधर रात गुजारनी होती उधर आखिर में जाते। अबू दाऊद 2135, फिर आप अपनी बीवियों के साथ नरम लहजों में बात करते, कोई नागवार गुजरती बात, कोई बात ऐसी होती नागवार गुजरने वाली बातों की वजह से बिल्कुल उस चीज़ को पीछे डाल देते और मुस्कुराते हुए आते थे। तो दूसरा जो बीवी का एक बड़ा हक है मर्द पे, वो क्या है? तहफ्फुज़, मुआशी तहफ्फुज़। अर रिजालू कवामून अलन निसा, मर्द कवाम है अपनी औरतों में। उसकी वजह क्या है? कि वो अपने माल खर्च करते हैं। सूरत निसा 34, अबू दाऊद 2143। लेकिन याद रखिए कि बीवी को अपने मर्द की हैसियत या उसके पास जितना माल है उससे ज़्यादा बढ़कर खाने पीने और कपड़े लत्ते का मुतालबा नहीं करना चाहिए। तीसरा हक जो एक बीवी का है अपने मर्द से, वो क्या है? कि शौहर बीवी को मुनासिब वक्त दे। बाज़ लोग माल दौलत दे देते हैं, वक्त नहीं देते। बुखारी की रिवायत 1968। फिर इसी तरह से शौहर का ये हक फ़र्ज़ है, बीवी का ये हक है कि बीवी के लिए तफरीह के मौके फ़राहम करे, यानी घूमना फिरना या कोई उसकी एंटरटेनमेंट का एहतमाम करना, ये भी शौहर का फ़र्ज़ बनता है। अबू दाऊद 2578। नबी सल्लम अपनी बीवी आयशा को एक वो खेल होता था उस दौर में, हबशी लोग तलवारों से लड़ते थे, वो दिखा रहे हैं। तो फिर आप देखिए कि बीवी के, कह लीजिए कि बीवी की जो एक रिफ़्रेशमेंट का के लिए एक जायज़ हद में रहकर काम करना। फिर अगली क्या है कि अगर दो या उससे ज़ायद बीवियां हो तो इंसाफ करें, और ये अदल रात गुजारने में भी होगा, खाने पीने पहनने ओढ़ने रहने सहने में भी होगा। हाँ, दिल की मोहब्बत एक अलग चीज़ है। सूरत निसा को अगर आप नोट कर लें तो उसमें ये चीज़ आपको आयत 3 में भी मिलती है, 129 में भी मिलती है। फिर अगला हक बीवी का क्या? कि शौहर बदतमीज़ी ना करे, बदकलामी ना करे। अबू दाऊद 2142। फिर नेक्स्ट क्या है? कि शौहर को बीवी से हुस्ने सलूक करना चाहिए। बुखारी 3331 और मुस्लिम 3644। बीवी को मारना नहीं चाहिए। बुखारी 5204 और निसा 34। अल्लाह के नबी के घर से गवाही मौजूद है कि आपने कभी अपनी किसी बीवी पे हाथ नहीं उठाया। फिर अगली बात, बीवी पे खर्च करें, यानी सिर्फ बीवी पे भी खर्च करें। तलाक 7 और बुखारी 4006। फिर बीवी का मेहर अदा करें, सूरत निसा 4 और अबू दाऊद 2162। फिर बीवी को घर की जीनत बनाए, यानी बीवी की इज्जत का भी ख्याल रखे, यानी बीवी को मतलब इज्जत दे, कह लीजिए, सूरत अहज़ाब 33। फिर अगला हक जो आप अपने शौहरों को जाकर आज सुनाइएगा, अगर वो कभी किसी वक्त एतराज़ करें किसी को, मुझे तो नहीं लगता करें, लेकिन औरतें समझती हैं कि मर्द हमारे पढ़ने पढ़ाने पर एतराज़ करते हैं, तो याद रखिए बीवी को दीन की तालीम देना या दिलवाना ये मर्द का फ़र्ज़ है, क्योंकि मर्द एक किस्म का कवाम हो गया ना उसके लिए। सूरह तहरीम आयत 6 है, अमल साले करने हैं तो उसके लिए इल्म और मार्फत की तो ज़रूरत होगी। फिर इसी तरह शौहर का ये फ़र्ज़ है और बीवी का हक है कि मर्द अपनी बीवी को इस्लामी तालीमात का पाबंद करे, उसको इस्लाम पे अमल करने में असिस्ट करे। इंसिस्ट नहीं भी कर सकता तो असिस्ट तो कर सकता है ना, मजबूर नहीं कर सकता तो मदद तो कर सकता है। बीवी के अखलाक, उसके अमल, उसके आदाब की निगहदाश्त करना मर्द की जिम्मेदारी है। बीवी नमाज़ नहीं पढ़ती, शौहर से पूछा जाएगा। बीवी अपनी इस्मत की हिफाजत नहीं करती, पर्दे का एहतमाम नहीं करती, मर्द से पूछा जाएगा, क्योंकि मर्द बहरहाल अपनी बात मनवा सकते हैं। और ये जो चीज़ है कि बीवी को गुनाहगारी की ज़िंदगी गुजारने के लिए आज़ादी दे देना, इसको दयूसियत कहा गया। आपने फरमाया तीन लोग जन्नत की खुशबू ना पाएंगे, हालांकि बहुत दूर से आ रही होगी, तो उसमें एक वो शख्स है कि जो अपनी बीवी में खराबी देखे और खामोश रहे। मस अज़ीज़ मिस्र का किरदार कुरान में मौजूद है, उसको ही समझ लीजिए सिम्बॉलिकली। ये सूरत निसा 34 और बुखारी 893 से आपको मिलेगा। फिर अगला बीवी का हक है कि शौहर को बीवी के राज जाहिर नहीं करने चाहिए। बीवी का कोई ऐब है, कोई राज है, शौहर बीवी के ताल्लुक़ की कोई ऐसी बात जो कि किसी के सामने नहीं खुलनी, तो उसको अपने दोस्तों में अपने नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखिए ये इंतहाई नापसंदीदा बात है। हदीस में नाम लेकर कहा गया कि कोई अपने बीवी शौहर का और शौहर अपनी बीवी का राज ना दे। इसी तरह बीवी को अपनी किसी दोस्त की हुस्न का तذکرہ या उसकी तारीफें इस तरह से अपने शौहर के सामने नहीं करनी चाहिए कि शौहर के दिल में उस औरत को देखने की इश्तिहा बढ़ जाए, ख्वाहिश बढ़ जाए। और ये सही मुस्लिम 3542 है। अब आप देखिए 14 बातें बताई हैं, इसमें 14 में आप 10 और ख़ुद भी ऐड कर सकते हैं। असल बात सारी ये है, ये सारी बात हकूक की नहीं है। इसमें आपका आपस में ताल्लुक कितना है। मुझे जो चीज़ सबसे ज़्यादा दोनों में कॉमन लगती है वो शुक्रगुजारी है। इस रिश्ते की खूबसूरत बुनियाद शुक्रगुजारी पे होगी ना तो मर्द सोचेगा। अमूमन हमारे कल्चर में 22-23 साल के बाद ही शादी होती है लड़कों की। 25 साल स्टैंडर्ड कर लीजिए, 25 साल में इस औरत के बगैर रहा। बालिग तो वो हो गया 12-14 साल में, इतने साल एक औरत के बगैर रहा, फिर नफ्स पे काबू पाया, रोज़े रखने पड़े और भी कई पाबंदियां लगानी पड़ी खुद पे। अल्लाह ने एक औरत दी, हलाल दी। कंपेनियनशिप कितनी बड़ी चीज़ है ना। आप देखिए कि ये वो रिश्ता होता है, अमूमन शुरू में भी तन्हा, बच्चे नहीं हैं, और अगर जॉइंट फैमिली सिस्टम नहीं तो भी अकेले, और अगर जॉइंट फैमिली सिस्टम में तो लोग बहाना ढूंढते हैं कि किसी वक्त हम तन्हा हों, खुश होते हैं, बच्चे होने लग जाते हैं, और एक वक्त आता है बच्चे चले जाते हैं अपने अपने घरों में। शुरू में तन्हा और बुढ़ापे में तन्हा। तो ये दुआ कीजिए कि अगर ये रिश्ते हैं एक दूसरे की इसलाह करें, कमी बेशी है। अब आइडियल सिचुएशन नहीं है, आप दीन में आगे जा रहे हैं, मर्द पीछे हैं, पीछे छोड़ देंगे या उसी पे खड़े रखेंगे? नहीं, आपका मेरा फ़र्ज़ बनता है हर अच्छी बात में अपने शौहरों को शामिल करें। शौहर अच्छी बात सुनकर आते हैं, वो अपनी बीवियों को शामिल करें। आप इस्लाह ला ही नहीं सकते अगर आपने कोई चीज़ सुनी, पढ़ी, देखी, समझी तो दिल बदला। शौहरों का भी दिल आपकी बातों से नहीं बदलेगा, आपके कहने से नहीं बदलेगा, वो भी वही बातें सुनेंगे तो दिल बदलेगा। उनको भी कुरान से जोड़िए। मुतालबे कम कीजिए, कम खाइए, फजूल खर्ची कम कीजिए, खाना ज़ाया ना करें, कम पकाएं, थोड़ा ले लें, लेकिन अपने मर्दों पे ये बात लाजिम करें कम अज़ कम 1 घंटा। अगर मेरे पास मस्जिदों की कंस्टडी हो ना, मिसाल है सारे शहर की, तो मैं कम अज़ कम शहर में हर मस्जिद में डेली शाम को 1 घंटे में शुरू से कुरान की तालीम लाजिम, मतलब RCM साथ में है ना, RCM में मगरिब से ईशा के बीच में आज रात से सूरत अल फातिहा शुरू हो रही है। हल्की पुल्की बातें, अमल की बातें, डे टू डे। कल सूरत अल बकरा का पहला रुकू, परसों तीसरा। यानी मर्दों को हमने ये जो आज़ाद छोड़ दिया है ना, कमाएं जी आप, आपका काम ही कमाना है, तो फिर अबू हुरैरा बेचारा क्या करते? और उमर ने तो बारियां लगाई हुई थी, एक दिन वो और एक दिन उनका हमसाया, बारी लेते। हर मस्जिद जहाँ आपकी अप्रोच है, बिलीव मी, हर जहाँ आप पहुँच सकते हैं, आप किसी एडमिन्स में हैं, मजलिस से मस्जिद की शूरा हैं, आप बोर्ड हैं, वहाँ ये पैगाम दीजिए कि खुदा के लिए कुरान को आम करें। बहसों को छोड़े, झगड़ों को छोड़े, मुबहसों को छोड़े, कॉन्ट्राडिक्शन को छोड़ दे। अभी फ़िलहाल हदीस को एक एक साइड का टॉपिक बना लीजिए, आप सूरत फातिहा से कुरान तो शुरू करें। और जो आप देखें कि पूरे कुरान में एक छोटा सा बुकलेट भी नहीं बनता इबादत के नाम पे, जिसको आप फिक कह लेंगे, ये तो आपको इस कोर्स से भी अंदाज़ा हो गया। सारा दीन अल्लाह से जुड़ने, अल्लाह का खौफ, तकवा, मोहब्बत का। अगर आज एक मस्जिद में ये शुरू होगा ना, तो 526 शायद गालिबन कमो बेश कम कर लीजिए, इतने दिन में कुरान पूरा हो जाएगा। अगर डेली वो मस्जिद वाले ऑफ़र कर रहे हैं ना, तो विद इन 2 ईयर्स RCM में एक पूरा कुरान तफसीर या तर्जमे के साथ पूरा हो जाएगा। और अगर मगरिब पे मिसाल है कि 50 लोग आते हैं, 10 भी बैठ गए ना, 40 चले भी गए, बिलीव मी, फिर भी इट्स ओके। लेकिन ये जो हमने इतनी बड़ी बड़ी मस्जिदें बनाकर सिर्फ नमाज़ों के लिए खोली, और वो भी खाली, मस्जिदें आबाद ही तब होंगी जब मस्जिदों में आने वालों को दीन मिलेगा। तो बहरहाल अल्लाह ताला हमें सबको एक दूसरे के साथ सिंसियर बनाए, मुखलिस बनाए। कोई क्विक क्वेश्चन है तो कर लीजिए, जो बातें हुई हैं उसी से मुतल्लिक, नहीं तो आगे चलते हैं। चलिए ठीक है, फिर आगे चलते हैं। औलाद के हकूक बहुत ही अहम टॉपिक है। जी सर जी कीजिए, मैंने तो खुद कहा है।
दादा माँ अपने बच्चों को स्कूल जाती ले जाती है, तो क्या ये एज अ नफिल इबादत में शामिल है या ये फर्ज
देखिए, इनका सवाल है कि बच्चों की तालीम बाप का फ़र्ज़ है, तो फिर माएँ जो बच्चों को स्कूलों में छोड़ती ले जाती हैं, इसका क्या हुक्म है? पहली बात है कि बच्चे की तरबियत माँ का फ़र्ज़ है। पहली बात, माँ खुद पढ़ी लिखी होगी तो उसको कहीं नहीं ले जाना पड़ेगा। आज क्या है, नाजरा पढ़ाने के लिए आधा घंटा दूर से माँ चलती है, 15 मिनट में वो सबक मिल जाता है और फिर आधा घंटा ले जाकर जाती है। ये एक ज़्यादती है। हर औरत को शादी से पहले कम से कम इतना तो कुरान समझ जाना चाहिए कि वो अपने बच्चे को नाजरा तो पढ़ा सके। अगर औरतें खुद पढ़ी लिखी हैं, देखिए जो माएँ खुद पढ़ लिख जाती हैं ना, उनका ये सारा काम ख़त्म हो जाता है, घरों में पढ़ता है। बाकी रहेगी जो, अगर आपकी मिसाल है बच्चों को स्कूलों में लेके जाना, अब अगर किसी के हस्बैंड जॉब करते हैं या काम करते हैं और अगर यहाँ का जो सेटअप चल रहा है उसमें, तो यू हैव टू डू इट। असल अगर आप आइडियल सोसाइटी, मुस्लिम सोसाइटी का एक स्केल्टन देखें, तो वो ये नहीं है जो आज हमारा है। 18 साल तक एक बच्चा पहले स्कूल में, फिर उसके कॉलेज में, और इधर उधर जाता है, फिर कहीं जाके कोई एक स्पेशलाइजेशन चूज़ करके आगे जाता है। ये तरीका नहीं था। इमाम बुखारी ने 18 साल की उम्र में अपने शहर के सारे उस्तादों से पढ़ लिया था और किताब भी लिख ली थी। तो ये एक आइडियल सोसाइटी। बहरहाल, तआवुन अल बिर्रि व तक्वा, जो काम अच्छी नीयत से करेंगे इंशाल्लाह अल्लाह उसमें अजर देगा। ठीक है, चलिए आगे है। औलाद के हकूक। औलाद का लफ्ज़ वलद से है। वलद बच्चे को कहते हैं, औलाद उसकी जमा है, वालिद बच्चा पैदा करने वाला यानी बाप, और वालिदा औरत, और दोनों को जमा करें तो वालिदैन। असल में तो वो लफ्ज़ बनता है दो वालिद, लेकिन मुराद उससे माँ और बाप है। तो जिस तरह से माँ बाप के हकूक़ हमने शुरू में पढ़ लिए, तो यहाँ अब औलाद के भी हकूक़ हैं। अगर इसमें मैं वो वाकई सुना दूं पहले, तो बहुत सारी चीज़ें कवर होंगी। हज़रत उमर के पास एक शख्स आता है अपने जवान बच्चे को लेके और कहने लगा कि अमीरुल मोमिनीन, मेरा ये बच्चा नाफरमान है, मेरी बात नहीं सुनता, तो आप इसको समझाइए। तो इससे पहले कि उमर कुछ कहते, उस बच्चे ने बाप के सामने अमीरुल मोमिनीन से कहा कि आप मुझे जो भी कहेंगे मैं आपकी बात सुनने और मानने को तैयार हूँ, लेकिन आप मुझे ये बता दीजिए कि बच्चा या औलाद होने के नाते मेरा क्या हक है इस बाप पे? क्या डू आई हैव एनी राइट्स? तो हज़रत उमर ने कहा कि तेरे तीन हक थे तेरे बाप के ज़िम्मे। नंबर एक, जी, तुझे अच्छी माँ देता। मुझे भी अंदाज़ा था, अब तरबियत ही कहेंगे, तरबियत बाद की बात है। पहला हक क्या है कि तुझे एक अच्छी माँ देता, और दूसरा क्या कि तेरी अच्छी तरबियत करता, और तीसरी बात यह है कि फिर तेरे सॉरी दूसरा क्या है कि तेरा अच्छा नाम रखता, और तीसरा यह है कि तेरी अच्छी तरबियत करता। तो उस बच्चे ने कहा कि फिर मैं आपको बता दूं कि मेरे बाप ने मेरे ये तीनों हक नहीं दिए। इसने एक मजूसी औरत यानी फायर वर्शिपर से शादी की, मेरा नाम ज्वाला रखा, ज्वाला जैसे घरों में जाले लगते हैं, और अरबों में आदत थी जानवरों के नामों पे नाम रखने की, बेकार नाम होते थे कभी, असद नाम जैसे शेर है उसका मानी। और तीसरी बात है, चूँकि मेरी माँ गैर मुस्लिम थी, मुशरिका थी, तो उसने मेरी परवरिश वैसे की। तो हज़रत उमर ने कहा कि ऐ शख्स, इसको ले जा, कसूर इसका नहीं तेरा है। तो औलाद के हकूक़ पे बात सुनने से पहले हम सबको भी देखना है कि कहीं हमने अपनी औलादों को अच्छे बाप या अच्छी माएँ देने से महरूम तो नहीं रखा हुआ। आज भी जब रिश्ते होते हैं, चले आप ढूंढ रहे हैं अपने बेटे के लिए लड़की, या आप ढूंढ रही हैं अपनी बेटी के लिए लड़का, या अगर आज के फी जमाना दौर में लड़का खुद ही लड़की या लड़की खुद लड़का ढूंढे, क्या उस वक़्त ये सोच होती है कि ये शख्स आने वाले बच्चों का बाप या ये औरत आने वाले बच्चों की माँ होगी? ये सोच के रिश्ते ढूंढिए, फिर बहुत सारे चीज़ें बदल जाएंगी। तो बाकी रहेगी औलाद, अल्लाह की नेमत है, उसका इनाम है, दुनिया की जीनत है। सूरत कहफ 46, अलमाल वल बनून अज़ीनतुल हयात दुनिया। नेक औलाद के लिए अम्बिया कराम ने भी दुआएं की थी, जैसे ज़करिया अलैहिस्सलाम की दुआ सूरत आल इमरान 38 और सूरत मरियम आयत 5 और 6 में। फिर इसी तरह पैगंबरों की तरह सल साले औलाद की हमें भी दुआ करनी चाहिए, हज़रत इब्राहिम की दुआ सूरत अलअकाफ 15 में। फिर इसी तरह से यानी सूरत अहकाफ 15 में भी, और हज़रत इब्राहिम ने अपने लिए मांगी थी रब्बी हबली मिनस सालिहीन। फिर इसी तरह से आप देखिए कि औलाद के हकूक़ में बहुत सारे जो हकूक़ हैं आपके मेरे सामने, उसमें से पहला हुक्म क्या है कि औलाद को अच्छी माँ दी जाए, और अच्छा भाव दिया जाए, जिस पे बात कर दी आपके सामने। फिर दूसरा हक क्या है कि शौहर बीवी जब आपस में किसी ताल्लुक़ का इरादा करें तो एक दुआ पढ़ी जाए। आप सबको आनी चाहिए, आती ज़रूर होगी, दोहरा लीजिए, बिस्मिल्लाही अल्लाहुम्मा जन्निबना शैताना व जन्निबिश शैताना मा रज़क़तना, अल्लाह के नाम के साथ। या अल्लाह बचा हमको शैतान से और दूर रख शैतान को उस औलाद से जो तू हमें इनायत करेगा। ये सही बुखारी 141 और मुस्लिम 3533 के अल्फाज हैं, तो ये दुआ लाजिम है। आज हम नस्लों के बिगाड़ की बात तो करते हैं, लेकिन कितनों को ये दुआएं आती हैं। फिर इसी तरह से आप देखिए कि औलाद के हकूक में से एक हक क्या है कि उनके पैदा होने से पहले ही, इवन और इवन शादी से पहले भी दुआएं शुरू कर दें। जैसे अभी आपको रेफरेंस दिया, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, नेक औलाद की दुआएं करना। फिर इसी तरह से उनकी फिक्र लग जाए आपको कि जब होंगे तब हम क्यों बात करें। अब हम तो तब दुआएं करते हैं ना जब औलाद बिगड़ जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आप देखिए कि अगला हक क्या है कि जब बच्चा पैदा हो जाए, यानी तरतीब के साथ ही अगर हम देख रहे हैं, जब बच्चा पैदा हो जाए तो उसका अच्छा नाम रखा जाए। इब्ने माजा 3165 और अबू दाऊद 2837 है। पैदाइश के दिन या 7वें दिन के अंदर अंदर नाम रख लेना चाहिए। सही बुखारी 1303 और मुस्लिम 6025। फिर उसके बाद औलाद का अकीका करना चाहिए। देखिए बच्चों के जो कुछ हकूक है ना, बलूगत से पहले या आप कह लें कि दूध की मुद्दत के अंदर के, तो मैं तरतीब से कोशिश कर रही हूँ बात करूँ कि बच्चों का अकीका किया जाए। सही बुखारी की रिवायत 5471। फिर इसी तरह बच्चे को दूध पिलाया जाए, रिजात की जाए, इसके अखराजात पूरे किए जाएँ। सूरत बकरा 233। वल वालिदातु युर्दिना औलादहुन्ना हौलैनि कामिलैन और सही मुस्लिम 2311। फिर इसी तरह से अगला क्या है कि औलाद की अच्छी परवरिश की जाए, उनको बिगाड़ा ना जाए। फिर इसी तरह औलाद का एक हक है कि औलाद के कत्ल से बचें, एबॉर्शन। अभी दुनिया में आए नहीं है, बल्कि इसको पीछे सेट कर दें, यानी बच्चा पेट में है तो उसको जीने का हक दीजिए। सही मुस्लिम 3564, क्योंकि ये कबीरा गुना है। सही सूरह बनी इसराइल आयत 31 में भी यही बात है। आज कत्ले औलाद के नाम पर जो डिफरेंट तरीके हैं, जिसको आप कोई भी नाम दे दीजिए, नाम बदल दिया जाता है, लेकिन उसमें एबॉर्शन इंतहाई कबीरा गुना है और इससे बचना चाहिए। या इसकी शिद्दत यहाँ से देख लीजिए कि नबी सल्लम जब किसी औरत से बैत लेते थे तो वहाँ अहद लेते थे कत्ले औलाद से बचोगी। सूरह मुमतहिना के आखिर में वो बैत के अल्फाज भी मौजूद हैं, वहाँ से भी डबल चेक कीजिए। फिर इसी तरह बच्चे पैदा हो गए, तरबियत शुरू हो गई, इसके बावजूद भी उनकी नेकियों के लिए दुआएं करते रहें। सिलसिला तो सही है 596, सॉरी, यानी वालदैन औलाद के लिए इनकी दुनिया की ज़िंदगी से भी दुआएं के लिए दुआएं करें, लेकिन जो इबादुर्रहमान है वो अपनी औलाद के लिए क्या दुआ करते हैं? रब्बना हबलना मिनस्वाजीना वज़ुर्रियातीना कुर्रतायुनिम वजालना लिलमुत्तकीना इमामा। सूरत फुरकान 74-75। और हज़रत इब्राहिम ने अपनी औलाद के लिए नमाज़ पर कायम रहने की क्या दुआ की थी? रब्बि जालनी मुकीमस्सलाता। जी शाबाश, सूरह इब्राहिम आयत 40। फिर इसी तरह से माँ बाप का ये हक फ़र्ज़ है कि औलाद की इस्लामी तौर तरीक़ों पर तरबियत करें, अल्लाह की पहचान दें, उसकी मोहब्बत पैदा करने की कोशिश करें, अल्लाह की इबादत के काबिल बनाएं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत सिखाएं, कुरान मजीद की तालीम दें, नेकी के कामों पे साथ ही लगा लें, उनकी अखलाकी इज्तमाई और माशरती तरबियत करना वालदैन की ज़िम्मेदारी है। बस आप देखिए कि औलाद को तौहीद सिखानी चाहिए, बुखारी की रिवायत है 1395 और मुस्लिम 121। बच्चा बोलने की मुद्दत को होता था ना, तो अल्लाह के नबी सूरह फुरकान की आयतें पढ़ते थे, पढ़वाते थे उससे, जिसमें अल्लाह ताला की बड़ाई की बात है। फिर अगला हक है कि 7 साल की उम्र में औलाद को तहारत और नमाज बिल्कुल क्लियर कट समझा देनी चाहिए, ताकि वो नमाज का आदी बन जाए। सही अबू दाऊद 466। फिर और औलाद को नमाजों के अलावा भी इबादत का आदी बनाना चाहिए, सही मुस्लिम 2669 और बुखारी 9751। यानी बच्चों से नफिल पढ़वाना, उनको रोज़े रखवाना, ये करना चाहिए। इसलिए कि आप देखिए कि जो आप करेंगे ना, बच्चों को कहना नहीं पड़ेगा। ये भी एक हमारा आजकल का इशू है, कहते हैं करते नहीं। किसी ने कहा कि बच्चे नहीं सुनते, पर ये याद रखो कि वो बच्चे देखते हैं। माँ बाप जो भी करेंगे, बच्चा उसको देखेगा, ये एक फितरी सी बात है। तो लिहाजा बच्चों को शुरू से ही मुख्तलिफ किस्म की इबादात का आदी कर देना चाहिए। फिर इसी तरह से अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर, इसकी रगबत शुरू से दिलानी चाहिए। सूरह लुकमान में याद है, हज़रत लुकमान ने अपने बेटे को क्या कहा था, वामुर, हुक्म दो, नेकी का हुक्म दो, फिर नेकी के कामों की प्रैक्टिस करवाएं, हिरस दिलाएं। एक गेम बच्चे खेलते हैं, एक जगह साथियों ने तैयार की, मैंने देखा, नेकियां ढूंढो, वो छोटे छोटे अच्छे गुड डीड्स लिख कर ना छुपा देते हैं, कोई दरख्त के गमले के पीछे, कोई इधर उधर, फिर बच्चे ढूंढते हैं, जिसको वो पर्ची मिलती है लाकर, फिर वो काम उनसे कराया जाता है। तो ये गुड डीड्स को फाइंड आउट करना, ये बड़ी प्यारी गेम है, बच्चों के अंदर इस तरह की रग़बत होनी चाहिए। फिर इसी तरह औलाद के हाथ से सदका दिलवाइए, अपनी जेब से कुछ पैसे अलग करके वो खुद भी डालें, आपने भी जो देना होता है वो बच्चों से दिलवाएं। फिर इसी तरह बुजुर्गों की मदद करने का जज्बा अपने बच्चों में डालिए, इल्म की महफिलों में बच्चों को ले जाइए और वहाँ कुछ ना कुछ काम उनके असाइन कर दीजिए। मतलब बहुत छोटे बच्चे हैं तो उनको वो कलर करवाने लग जाएं, आपके बेबी सिटर आपके अपने ही बड़े बच्चे हो सकते हैं अगर हम उनमें ये शौक डाल दें। फिर इसके बाद औलाद का अगला हक क्या है कि आप औलाद को गैर मुस्लिमों की मुशाबहत से बचाइए, सही जामिउ सगीर 1067। फिर औलाद को अच्छा अख्लाक सिखाना और बुरे अख्लाक की हकीकत समझाकर इसे रोकना चाहिए, सही मुस्लिम 6637। मसलन क्या, अब इसके में सब पॉइंट्स लिख सकते हैं कि मसलन कैसे। नंबर एक, चोरी की हकीकत समझाइए, फिर इससे रोकिए। हंसी मजाक में भी झूठ बोलने से रोकिए, अबू दाऊद 4999, यानी 3 दफ़ा 9। फिर बच्चों से वादा पूरा करवाना, अमानत और दयानत सिखाना, बुखारी 3-3। बदकलामी से रोकिए, तिरमिज़ी 1977। औलाद को लहव लाएब की हकीकत समझाकर इन्हें फजूल कामों से रोकिए, सूरत मोमिनून आयत 3 में मोमिन का मिजाज क्या बताया गया, अनिल लगवी हम मोरिदून, एराज करते हैं। तो आज तो अपने बच्चों को खुद हम हाथों में कार्टून पकड़ा कर कहते हैं खेलो। आज की माँ ने बच्चे को काफ़ी ज़्यादा मिसयूज़ किया है, सॉरी टू से दैट। और जब से नेट फ़ोन में आ गए, उस वक़्त से तो बात और ही बिगड़ गई। अल्लाह की पनाह, अपनी सहूलत के लिए काम करने, काम फ़ोन नहीं दूंगी तो काम नहीं करने देगा। पहले करती थी माएँ काम, पहले होते थे हाथों में फ़ोन, और जिस बच्चे के हाथ में आपने नेट दे दिया, अब जो मर्ज़ी पाबंदियाँ लगा लें, यकीन करें छोटा 3 साल का बच्चा उंगली की मदद से जाकर यूट्यूब खोल लेता है। उनको वो तस्वीरें छोटे छोटे दिमागों में रची हुई हैं, उनको पढ़ना थोड़ी आता है। और एक बच्चे ने एक मौके पे मेरा फ़ोन पकड़ा, ऐसे ही हम बैठे हुए थे किसी दर्स में, ऐसे ट्रिप में थे, तो उनका बच्चा बैठ गया आके। मैंने कहा देखो करता क्या, यकीन करें उसने मेरा फ़ोन खोला और उसमें से उसने यूट्यूब खोली, और मुझे उस दिन उस बच्चे से एक दो चीज़ें समझ आई जो मुझे पहले नहीं आती थी। और उसने न जाने क्या लिखा, मैंने आज तक अपने फ़ोन पे कभी कार्टून नहीं खोले, बिलीव मी कि उसने पता नहीं क्या टच किया कि पूरे कार्टूनों की लिस्टें खुल गई और उसने अपनी पसंद का कार्टून लगा दिया। 3 साल का बच्चा, मैं उसका मुंह देख रही थी, ऐसे उंगली फेरते हैं बच्चे। तो आप अगर उसमें उनको अच्छी चीज़ें सिखाएंगे तो वो अच्छी सीखेंगे इंशाल्लाह। फिर इसी तरह औलाद को दूसरों के हकूक़ की अदायगी का भी दर्स दीजिए, पहले घरों में बुजुर्ग होते थे, बुजुर्गों की खिदमत बच्चों से कराई जाती थी, उनमें आजजी आती है। आप अपनी सास के साथ या आपके शौहर अपनी माँ की देखभाल कर रहे हैं, बच्चे देख रहे होते हैं, कल वो भी करेंगे इंशाल्लाह ताला, तो फिर दूसरों के हकूक कैसे होंगे? नंबर एक, ये इसके फिर मेन पॉइंट्स लिख लीजिए, नंबर एक सिला रहमी सिखाइए, बुखारी 6138। कभी बच्चों से कहिए कि नानी को मैसेज छोड़ें, खाला को छोड़ें, फुप्पो को छोड़ें, दादी को मैसेज छोड़ें, बात करें। बच्चों के दिलों में मोहब्बत डालिए रिश्तों की, काट के बच्चों को रखा तो ये हमसे भी कट जाएंगे। फिर दूसरा इसका पॉइंट क्या है कि पड़ोसियों के हकूक सिखाइए, बच्चों के आज से कोई छोटी मोटी चीज़ दिलवाइए कि जो नेबर में देकर आओ, बुखारी 6014। ज़रा बड़े होते बच्चों को कहिए चले अपने आंट नेबर के पत्ते झाड़ दीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन उनसे पड़ोसियों के काम करें। फिर बच्चों को बीमार की आदत सिखाइए, सही मुस्लिम 6551, यानी 6551। फिर बच्चों में मेहमान नवाजी का शौक़ पैदा कीजिए, बुखारी 6134। घर में मेहमान आते हैं, बच्चों से खिदमत कराया करें, वो दुआएं लेंगे, वो काम करेंगे, अच्छा लगेगा। फिर इसी तरह इसी में अगला पॉइंट क्या है कि बुरी मजलिसों से बचने और अच्छी मजालिस इख्तियार करने की तलकीन कीजिए, सही बुखारी 2101 और मुस्लिम 6692। फिर इसी तरह अगला पॉइंट क्या है कि औलाद की सेहत का ख्याल रखें, इसके सब पॉइंट क्या हैं? नंबर एक, रोज़ गुसल दिलवाएं। बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं कि गुसल लेने में कितनी, यानी शावर में कितनी हेल्थ है। बस बच्चों से बू आती है, दूध की बसांद, पैम्पर की बसांद मिलजुल के, और ऊपर आप कोई लोशन ही क्यों ना लगा दें, एक सेकंड उस बच्चे को आप होल्ड नहीं कर सकते कि जिसके पास से ये रंग बिरंगी किस्म की बदबूएं किसी खुशबू के साथ मिलकर आ रही हों। बच्चे को रोज़ गुसल दिलाइए, और गुसल का बेस्ट टाइम फजर से पहले का, फितरी बात है, उस वक़्त एक नया दिन शुरू होता है, उस वक़्त उठकर जो गुसल कर लेता है वो सारा दिन फ्रेश रहता है। फिर दूसरा हक बच्चे की सेहत के मुतल्लिक क्या है कि बच्चे के नाखून और इसी तरह प्यूबर्टी के साथ ही उससे जो गैर ज़रूरी बाल होते हैं उनको साफ़ करना सिखाइए, मुस्लिम 599 और अबू दाऊद 4200। फिर इसी में एक पॉइंट लिखिए, बच्चों की जिस्मानी वर्जिश की रग़बत दिलाएं, एक्सरसाइज करवाएं, खिला खिला के मोटा ही नहीं करना उनको, बैठे एक हाथ में चिप्स का पैकेट है दूसरे में कोक है और सारा दिन का ज़्यादा हिस्सा वो बैठे हैं, वज़न तो बढ़ेगा। आज देखिए कि यूथ में या इवन प्री यूथ जो है उसमें बच्चों का वज़न बहुत बढ़ जाता है, तो उसकी वजह अनहेल्दी लाइफस्टाइल है। आज से शायद 100 125 साल पहले अल्लामा इकबाल रो गए कि रुलाती है मुझको जवानों की तन आसानी, जौरा पाए और देखा और रोए क्या कि मुझे जवानों का तन, तन मैंने बॉडी, आसानी मैंने आसान, यानी हिलके पानी भी नहीं पीते, पानी भी नहीं हजम होता। आज देखिए बूढ़ा बाप आज भी घास काट लेगा बाहर से, जवान बच्चा नहीं काटता। अब्बा जी वो पैदल 1 किलोमीटर दूर जाकर भी दूध ला देंगे, बच्चा गाड़ी के बगैर नहीं जाएगा। तो अपने बच्चों को और ख़ास तौर पे लड़कों को जिस्मानी तौर पे मजबूत बनाएं। नेक्स्ट पॉइंट नोट कीजिए, औलाद के हकूक में से औलाद को हलाल और हराम का फ़र्क बताइए, हलाल का पाबंद कीजिए, हराम से उनको रोकिए। फिर अगली बात, इस्लाम के अहकामात का पाबंद बनाइए, कैसे? बच्चियों को पर्दे की पाबंदी, सूरह अल-अहज़ाब 59, लड़कों को दाढ़ी रखने की रग़बत और ट्राउज़र को शलवार को इस्लामी असूलों के मुताबिक इस्तेमाल करना, सही जामे सगीर 3209। फिर इसी तरह से औलाद को अच्छी बात कहने की तरबियत दीजिए, गलत बात पे कभी ना हंसे, चाहे वो 1 महीने का बच्चा क्यों ना, एक माँ का तो बोलता भी नहीं ना, 1 साल का बच्चा गलत बात करे और अगर आप चुप कर गए और आगे से मुस्कुरा गए, आपने अपना हिस्सा डाल दिया, बुखारी 6136। फिर बच्चों को, औलाद को बदकलामी से रोकिए, तिरमिजी 1610। औलाद को रहम दिली सिखाइए, सही तिरमिजी 1924। अब इसके अगला पॉइंट क्या है कि औलाद की अच्छी मुआशरती तरबियत, यानी मुख्तलिफ तरबियतें हैं ना, जिस्मानी तरबियत, अखलाकी तरबियत, मजहबी तरबियत, अब क्या है मुआशरती तरबियत, कैसे? नंबर एक, अफ्वो दरगुजर सिखाइए, सूरत बकरा 237। जब आपके मेरे लिए अफ़ है, दरगुजर है, तो बच्चों के लिए क्यों नहीं? और बच्चों को तो हर वक़्त ही मुकदमे होते हैं, उसने ये मारा, तो बच्चों से कहिए कि आप माफ कर दें, दरगुजर जाने दो। और सबसे पहले किसको माफ करेंगे? घर में ही अपने भाई या बहन को। जब घर में माहौल अच्छा हो जाएगा तो माशरे में माहौल खुद बहुत अच्छा होगा। फिर उसके बाद बच्चों को नरमी से पेश आने का सबक दीजिए। कभी आप एक बच्चे को दूसरे के साथ या दोस्त के साथ थोड़ी सी हार्श लैंग्वेज या हार्श एटीट्यूड करता देखें तो समझाइए। सही मुस्लिम 6601। फिर अगली तरबियत, इसमें अगला नुक्ता क्या तरबियत का, बच्चे को गुस्से पे काबू पाने की तलकीन कीजिए। आल इमरान 134। ईसार और कुर्बानी का जज्बा पैदा करें। बुखारी 4889 और सूरत हशर में वाक्या जो मौजूद है, एक सहाबी ने जो अपने ऊपर एसार किया था दूसरे के लिए, उसको सुनाइए। यानी मीन के बच्चों को ऐसी बातें सुनाइए कि जिससे उनके अंदर भी इसी का रग़बा हो। फिर बच्चों को रास्ते में पड़ी हुई तकलीफ दे चीज़ों से को हटाना सिखाइए। सही मुस्लिम 153। कोई शाख पड़ी हुई है, आप यहाँ से निकले, बच्चे को स्कूल से लिया, पत्थर है रास्ते में, पत्ता है, झाग है, बेटे इसको उठा के हटा दीजिए। बस कुछ कहे नहीं, कहानी ना सुनाए। आप पहले शुरू में खुद उठाया करें, बच्चे भी देख कर सीख जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। फिर नेकी का हुक्म देने और बुराई से रोकने की तलकीन कीजिए। मुस्लिम 177। कैसे? छोटी छोटी बातों पर। अपने ही साथियों में अगर कोई गलत चीज़ देखे तो उनको प्यार से समझाएं। फिर इसी तरह जवान होते हुए बच्चे, वही बात है कि टीन एज से पहले ही बच्चों को, लड़कों को ख़ास तौर पे औरतों की तरफ ताड़ ताड़ कर नज़रें रखने और गाड़ने से रोकिए। अपने बच्चे को कहिए बेटा नज़रें नीचे रखो, लोअर योर गेज़। 7, 8, 9 साल की उम्र में बच्चे का कद आपके बराबर ही होने लग जाता है। बेटा लोअर योर गेज़, नज़रें झुकाओ। बहन है घर में, नज़रें झुका के बैठो, माँ से बात करो नीचे बैठो। और ख़ास तौर पे फिर लड़कियाँ और लड़के तो नामहरम औरतों और मर्दों के साथ तन्हाई में मत बैठने दीजिए। अपनी बच्चियों को, इवन वह 2-3 साल की हैं, इवन चचा मामू फूफा कोई करीबी रिश्तेदार, उसके साथ कभी तनहा ना छोड़ें, कभी उनकी गोदों में ना बिठाएं। बिलीव मी, इस पे तो मैंने एक पूरा लेक्चर हमने लिया था पेरिस में कि बच्चों को सेक्सुअली कैसे सिक्योर करें, पूरा एक आर्टिकल था, उसकी बेस पे बात की थी पिछले, यानी टू पिछले से पिछले, यानी 17 का जो दौरे कुरान था उसी के अराउंड के लेक्चर्स में वो कहीं होगा कि बच्चों की आज के दौर में ख़ास तौर पे, वल्ला ही ये एक बिग इशू बन चुका है। जब बाहर भेड़िए हों और गंदगी हो तो फिर बच्चे कहाँ महफूज होंगे। पेडोफीडिया का नाम आपने भी सुना होगा, तो लिहाजा अपने बच्चों को रोकिए। फिर इसी तरह से बड़ों का अदब सिखाइए। तिरमिज़ी 1919। फिर इसी तरह से औलाद को अच्छे आदाब सिखाइए। अब ये अगला पॉइंट है। कैसे? नंबर 1, खाने के आदाब सिखाइए। बुखारी 5376। बच्चे इधर उधर खाने लग जाते हैं, बाएं हाथ से खाते हैं, पूरी प्लेट में हाथ मारते हैं, रोकिए इन सब से। फिर दूसरा, सोने जागने के आदाब सिखाइए। सही बुखारी 5018। फिर कज़ाए हाजत के आदाब सिखाइए। अबू दाऊद 5197। बाथरूम में कैसे बैठते हैं, वहाँ बोलना नहीं है, बातें नहीं करते और जल्दी से फारिग होना है। फिर इसी तरह सलाम के आदाब सिखाइए बच्चों को। अबू दाऊद 5197। छींक और जमाई, यानी स्नीजिंग हो जाती है या यॉनिंग होती है तो उसके मैनर सिखाइए। तिरमिज़ी 2746। फिर इसी तरह से औलाद के साथ नरमी और मोहब्बत से पेश आइए। बुखारी 5997। फिर औलाद को नमाज का हुक्म दीजिए। सूरत तौहात 132 और मरियम 55। औलाद के दरमियान अदल कीजिए, बहकी और तबरानी। औलाद को दीन सिखाना चाहिए। बुखारी 2586। और औलाद के लिए इस्तेआत के मुताबिक माल छोड़ जाइए। यानी कुछ हिस्सा अगर अपने माल का हम अपने बच्चों के लिए एज अ विरसा छोड़ जाते हैं तो ये कोई बुरी बात नहीं है, कल वो बच्चे दूसरों से तो नहीं मांगेंगे। बुखारी की रिवायत है 2742। और सबसे बढ़कर औलाद को इस्लामी तालीम दीजिए। दीनी तालीम व तरबियत के लिए इहतमाम करना माँ बाप का फ़र्ज़ है। क़ुरान की तालीम, हदीस की तालीम, सीरत की तालीम कौन देगा उनको, कौन दिलाएगा, जिन्होंने दुनियावी स्कूलों में भेजा। तो अपने बच्चों के इस हक़ को मत ज़ाया कीजिए। सही इब्ने माजा 224 और 22। अब आप देखिए कितने हकूक अभी तक हुए हैं, 11, और उसके अंदर सब पॉइंट्स मिला लें तो कम से कम 50 हकूक की बात हुई है। तो आखिरी 12वां जो बड़ा हक कह लीजिए, जवान होते ही औलाद की शादी की फिक्र कीजिए, निकाह की, और बेटी है तो उसकी विलायत, और बेटा है तो उसके लिए अच्छी लड़की ढूंढने का एहतमाम कीजिए। तिर्मिजी 1101। याद रखिए कि औलाद आजमाइश है, अनफाल 28 और मुनाफिकून आयत 9। इसका इलाज क्या है कि वो फितना जो माल और औलाद में है, उसका इलाज क्या है कि आप इन चीज़ों को अच्छे तरह से रेज कीजिए। देखिए फितना कहते हैं उस चीज़ को, हो नेमत बट मिसयूज़ करें तो जहमत बन जाए। मसलन छुरी नेमत है ना, लेकिन अगर आप उधर से पकड़ लें जहाँ से काटना है तो आपका हाथ कटेगा, ये रहमत नहीं जहमत है। तो इनकी अच्छी तालीम और तरबियत करना कराना, ये सब कुछ इसके अंदर आता है। तो अब आप सोचिए कि हम क्या वाकई बच्चों को इतनी बड़ी जिम्मेदारी समझते हैं? हमारे जहन में तो ये स्कूल चले दें, खा लें पी लें, सर्दी आई तो मोटी जैकेटें पहन लें, सारा दिन बेचारे खानों के साथ हमारी डांटे भी खाते हैं, और कुछ ने बिल्कुल ही अलग कर दिया। तो कोई सवाल है आपके जहन में, कोई प्रैक्टिकल चीज़ जो अभी ना मैंने शेयर की और आप के कहने से ज्यादा आ जाए तो बता सकते हैं। जी आप जी, जवान होती हुई बच्चियों को कैसे ट्रेन करें? देखिए माँ, एक दोस्त भी होती है, वो बेस्ट मॉम है जो बेस्ट फ्रेंड भी हो। बच्चियों को जब घर में इस तरह की मदद नहीं मिलती तो फिर वो दोस्तों, सहेलियों और पहले दौर में खालाओं फुफियों से ऐसी बातें शेयर करती थी। हर चीज़ वक्त आने पर उनको थोड़ा सा पहले से अच्छे अंदाज़ में बताई जा सकती है। और मैं जो चीज़ अक्सर रेकमेंड करती हूँ कि 10 साल की उम्र में बेटा या बेटी कुरान पढ़ाना शुरू कर दें, हल्की हल्की वजाहत से। 15 साल से पहले कुरान में सारे हुक्म मसले वो खुद ही पढ़ चुका होगा। इवन लड़कों को भी कुछ चीज़ें, जैसे आपको पता है सूरह बकरा में सेकंड पारे के लास्ट रुब में कुछ ऐसे इश्यूज है जो सिर्फ औरतों से मुतल्लिक है। अब आप कहते हैं 10 11 साल के बच्चे को ये कैसे पढ़ाएं, गुजार दीजिए ऊपर से, क्यों हा ही करते हैं। आप देखिए कि वॉशरूम्स यूज़ करते हैं ना सब, टॉयलेट की बातों को कोई हवा बनाता है या उसको कोई मजाक या हंसी की बात है, दिस इज़ नीड। तो वक्त के साथ ये एक बेसिक प्रोसीजर चल रहा है, इट्स ओके। यानी बस उसको हल्की सी बात करके क्यूरियोसिटी ना डाल दें और आगे चले जाएं। हाँ बेटी आपकी पढ़ रही है आपसे कुरान, जब आप ऐसी आयतों पे आए तो अच्छे तरीके से बता दे, बेटा ये ऐसे होता है, हो तो ये करते हैं, ये नहीं करते, ये जायज़ है ये नाजायज़ है, तो इंशाल्लाह फिर उससे फ़ायदा होगा। बच्चों से दोस्ती होनी चाहिए, लेकिन इतनी बेतकल्फी ना हो कि आप अपनी बातें उनसे शेयर करने लग जाएं। ठीक है, चलिए आगे एक करके फिर आपको ब्रेक देती हूँ। रिश्तेदारों के हकूक, रिश्तेदार का लफ्ज़ आप देखिए, जिस दिन से ये मामला शुरू हुआ है हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, गौर कर रहे हैं कि ये अल्लाह ताला की कितनी बड़ी नेमत है कि उसने हमें मुख्तलिफ रिश्तों में डाला है। और पीछे हमने रिश्तों की 3 किस्में भी पढ़ ली थी। तो रिश्तेदारों के अमूमी हकूक़ पे अगर थोड़ी सी बात करूँ तो अल्लाह ने ख़ुद ये हुक्म दिया है सूरत निसा आयत 1 और नहल 90 के, रिश्तेदारों का ख्याल रखो। फिर इसी तरह से करीबी रिश्तेदारों के साथ वही सलूक और बर्ताव होना चाहिए जो इंसान को अल्लाह ने कह दिया। मसलन करीबी रिश्तेदारों में देखिए, माँ बाप, औलाद, भाई बहन, खाला, मामू, चचा, फुप्पो। अल्लाह ने खाला को माँ की जगह और चचा को बाप की जगह रखा, ये हदीस में मिलता है आपको। तो इनकी इज्जत करना, इनके आगे अदब से रहना, ये सरासर दीनदारी है। वो बच्चे सबको अच्छे लगते हैं जो अपने बच्चे बापों के बाप, बापों के भाइयों यानी चचाओं और दूसरे बुजुर्गों के साथ अच्छा सलूक करते हैं। तो रिश्तेदारों के साथ अच्छे मामले को सिला रहमी कहते हैं। कब? जब वो इवन जवाब में आपके साथ अच्छा मामला ना भी करें। ठीक है, तो चंद रिवायतें नोट कीजिए इस मौजू को समझने के लिए। सिला रहमी से रिस्क और उम्र में कुशादगी होती है। बुखारी 599, 5985 और मुस्लिम 6523। कौन नहीं चाहता कि उसकी उम्र बड़ी हो और कौन नहीं चाहता कि उसका रिस्क बढ़े? तो फिर सिला रहमी कीजिए। फिर रिश्तेदारी को जोड़ने वाले को रब जोड़ता और काटने वाले को काटता है। बुखारी 5987। कतई रहमी करने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। बुखारी 5984, मुस्लिम 6520। कतई रहमी क्या है? आप नहीं मिल रही हैं अपने ससुराल से, कोई झगड़ा है, कोई लड़ाई है, बच्चों को नहीं रोक सकते आप, याद रखिए उनके खून के रिश्ते हैं, आपको भी नहीं रुकना लेकिन उनको तो बिल्कुल भी नहीं रोकना। तलाक हो गई, शौहर अलग बीवी अलग, आप कहते हैं खबरदार जो बच्चा बाप को मिला या बाप बच्चे से मिलने की कोशिश करे ये जुर्म होगा। फिर इसी तरह जो रहम नहीं करता इस पर रहम नहीं किया जाता। सही बुखारी 7376 और मुस्लिम 6030। रहम का जज्बा बदबख्त के दिल से निकाल लिया जाता है, यानी अल्लाह दिल से सख्त दिल में से नरमी निकाल देता है। तिर्मिज़ी 1923। फिर रहम खाने वालों पर आसमान वाला रहम करता है, अबू दाऊद 4941 और तिर्मिज़ी 1923। हाफ़िज़ इब्ने हजर अल अस्कलानी बहुत ही प्यारे मुहद्दिस गुजरे हैं, कहते हैं कि रिश्तों के तीन दर्जे होते हैं, थ्री डिफरेंट लेवल्स ऑफ द किनशिप। नंबर एक मवासिल, मीम वाओ अलिफ स्वाद लाम, वसल सही है, सिला रहमी जैसे। मुराद क्या है? रिश्तेदारी जोड़ने वाला वो है जो दूसरे से आगे बढ़कर हुस्ने सलूक करता है, ना कि वो जिसकी तरफ लोग बढ़कर आए, यानी ये पहल करता है हमेशा, ये लोगों के साथ अच्छा मामला करने में पहला होता है। दूसरा है अल मकाफी, किफ़ायत से, अलिफ लाम मीम काफ अलिफ फाया, बराबर का बदला देने वाला। ये कौन है? जो लेता है और बराबर का बदला देता है, यानी भड़के ज्यादा नहीं करता लेकिन बराबरी के साथ अच्छा ही रखता है। तीसरा है कतई रहमी करने वाला, जिससे आगे बढ़कर हुस्ने सलूक किया जाता है और वो नहीं करता। जब दोनों जानिब से ही काटते हैं तो फिर रिश्ता तो कट ही जाता है। फतुल बारी जिल्द 10 437। अब आप और मैं अपने आप को देखें कि हम किस लेवल पे खड़े हैं, हम रिश्तेदारियों को कहाँ समझते हैं। अल्लाह आपको मुझे हिदायत दे। तो रिश्तेदारी का तो हमने मुकाम देख लिया, अब देखिए कि रिश्तेदारों के हकूक़ क्या हैं। ये बहुत अहम सवाल है, स्पेशली कुछ सिस्टर्स आके मेरे से ख़ुद भी पूछती हैं कि कुरान पढ़ते हैं तो सिला रहमी की तो बहुत बात है, तो फिर रिश्तेदार बुलाएं तो ना जाएं, फिर उनकी मेहंदियों में ना जाएं, और उनके ऐसी दावतें जिसमें कोई नाफरमानी है, और जी रिश्तेदारों का सोर्स ऑफ इनकम ऐसा है वैसा है ना, ये क्वेश्चंस तो नोट कीजिएगा क्या चीज़ रिश्तेदारियों के हकूक में आती है। नंबर एक हुस्ने सलूक, सूरत निसा 36। दूसरी बात बड़ों की इज्जत और छोटों पे रहम, अबू दाऊद 4943 और तिर्मिज़ी 1919। तीसरा तीमारदारी, कोई बीमार है तो जाइए आदत कीजिए, मुस्लिम 6551। नेक्स्ट थिंग क्या है? ताज़ियत और तसल्ली, कब? जब कोई हादसा हो जाए या मौत हो जाए, आ जाए मौत हो जाए या हादसा हो जाए, तिर्मिज़ी 1073। नेक्स्ट है मुसीबत में हमदर्दी, और नेक्स्ट क्या है? नरम पहलू रखना, ख्वाह रिश्तेदार जालिम और सख्ती ही करें। सही मुस्लिम 6525 और फ़ुस्सिलत 34। आपको पता है कि दोस्त दुश्मन दोस्त बन जाते हैं अच्छे ताल्लुक़ की वजह से। फिर अगला इनका हक क्या है कि अगर रिश्तेदार मुहताज हैं तो सदक़े की इब्तिदा इनसे करनी चाहिए, वबदा बिमन ताउल। क्या पता चला कि सदका देना है? आपके पास दो चॉइसेस हैं, एक है कोई भी मुहताज, दूसरा है वो मुहताज जो रिश्तेदार भी है, तो किसको दीजिए? दोहरा अजर क्यों? एक सिला रहमी का और एक सदके का। बुखारी 2318 और मुस्लिम 2313। फिर नेक्स्ट बहुत बड़ा हुक्का, ये बहुत कम लोगों को पता, सिला रहमी का सबसे बेहतरीन इजहार अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर है। अपने रिश्तेदारों में कोई बुराई देखी तो अच्छे तरीके से खैर ख्वाही के साथ रोकिए और नेकियों की रगबत दीजिए। सूरत शोरा 214। कुछ लोग सबको कहते रहते हैं, रिश्तेदारों को नहीं कहते। फिर अगला इनका हक क्या है कि रिश्तेदारों की तकलीफ़ को दूर कीजिए, किसी भी तकलीफ़ में बहुत अजर है किसी की तकलीफ़ को दूर करने का। फिर इसी तरह रिश्तेदार को खुश कीजिए, कैसे? इनके पास जाइए किसी ऐसे मौके पे जब उनकी खुशी है, लेकिन शर्त एक है कि इसको फ़र्ज़ ना समझ लें, ना जाने पे किसी के ऊपर कतई रहमी का फतवा ना लगा दें, और उस खुशी के मौके पे अल्लाह की नाराज़गी का कोई काम ना हो, ठीक है? फिर रिश्तेदारी तोड़ने वालों से रिश्ते जोड़िए, सही मुस्लिम 6525 फुस्सिलत 34। और करीबी रिश्तेदारों को ज़्यादा हक़ दीजिए, और उसके बाद अलअक्रबु मिनल अक्रब का असूल है। बुखारी 5971। बस अपने माँ बाप को छोड़ दिया, उनकी तो कोई टेक केयर नहीं, और खाला फूफी मामू को देख रहे हैं, ये भी दुरुस्त नहीं होगा। अब आप देखिए कि इस्लाम रिश्तों को इतना जोड़ता है, और रिश्ता जुड़ता है तो फिर माशरे भी जुड़ते हैं। स्ट्रॉन्ग फैमिली सेटअप इस्लाम का एक बहुत कीमती महाज़ है। यानी एक छोटा सा जुमला बोल के आगे जाने की इजाज़त दीजिए, और वो क्या है कि वो कौमें जो तीर तलवारों से और बड़े बड़े वेपन से नहीं डरी थी, नहीं टूट रही, नहीं टूटेंगी, बहुत स्ट्रांग है, वो आज अपने वीक फैमिली सेटअप से टूट रही हैं। आज पूरा ही वेस्ट अपने कच्चे और कमज़ोर फैमिली सेटअप की वजह से ज़ुबू हाली का शिकार है। इस्लाम में स्ट्रांग फैमिली सेटअप है। माँ, हर घर ओल्ड होम है, हर घर डे केयर है, बच्चे भी उधर। ये जो आपको जिस मुल्क में, इससे भी बल्कि आप एक सिंपल सा क्राइटेरियन रख लीजिएगा कि फैमिली सेटअप के कमज़ोरी की दलील क्या है, कि वहाँ ओल्ड होम्स होंगे, वहाँ डे केयर सेंटर्स होंगे, यतीम खाने होंगे। और स्ट्रॉन्ग फैमिली सेटअप यानी कह लीजिए आइडियल मुस्लिम सोसाइटी में कोई एक ओल्ड होम भी नहीं होगा। वजह, कोई देगा अपनी कीमती मोती कि आप हमारे घर की दुआएं आप ले जाइए, सिर्फ इसलिए कि हम सहूलत से सोएंगे, ये बूढ़े हो गए, अब आप इनको देखें भाले। हम अपनी सारी दुआएं भी भेज देते हैं ओल्ड होम्स में, सिर्फ इसलिए कि बेटा भी काम करता है, बहू भी काम करती है। देखिए, उल्टे कपड़े पहनेंगे तो सांस तो घुटेगा, राइट में लेफ्ट, और लेफ्ट फुट में राइट जूता पहनेंगे तो पाँव तो दबेंगे। आज ये हो रहा है, उल्टे जूते पहन के चलते हैं, इसलिए बार बार ठोकरें खाते हैं। इस्लाम पे रहेंगे, हर चीज़ को उस सेटअप पे रखिए, बाकी सब कुछ खुद ही ठीक होगा इंशाल्लाह। मुख्तसर से दो कर लीजिए, अभी हैं 5-6 मिनट ब्रेक में, कर दूँ बहन भाइयों के हकूक, क्योंकि फिर अगला टॉपिक शुरू होगा ना। भाई बहनों के भी हकूक होते हैं। जी बिल्कुल होते हैं। सूरत निसा पहली आयत, या अय्युहन्नासुत्तकू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा। रिश्ते की बुनियाद पड़ती है कहाँ? तकवा के ऊपर। तो जिस तरह शौहर बीवी के साथ ये मामला है, बहन भाइयों के साथ तो बदरजे उत्तम होगा, इसी तरह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो रिश्तों की बातें की हैं उसमें भाई बहनों के साथ मामला बहुत ज़रूरी है। क्या करें अपने भाई बहनों के साथ? यानी एक तो होते हैं सगे बहन भाई, ऑफ कोर्स उन्हीं की इस वक्त बात हो रही है, ओवरऑल तो हमने बहुत कुछ कह सुन लिया, लेकिन करना क्या है? नंबर एक, अपने भाई से खंदा पेशानी से मिलिए, फिर स्माइल की बात आ गई, चौड़े चेहरे, खुशी के साथ, स्माइल के साथ। मुस्नद अहमद 14766 और तिरमिज़ी 1970 आपने फरमाया, हर नेकी सदका है। और ये भी नेकी है कि अपने भाई बहन के साथ मिलो और उनके उसके बर्तन में अपने डोल से कुछ डाल दो। क्या पता चला कि आप देखिए कि कुरान में कितने भाइयों का जिक्र है, लिखिए ज़रा। मूसा और हारून, और बोलिए यूसुफ़ और अखवाने यूसुफ, शाबाश, और बोलिए जी, हाबील और काबील, लिखिए, गुड। और भाई बहन का लिखिए, मूसा और उख्ते, उख्त क्या होती है? बहन। ओके, और लिखिए, और क्या है भाई बहन का ताल्लुक, कोई कहीं है? बाप बेटी का चक चक तस्करा किधर है कुरान में? शुएब और उनकी बेटियां, जी ठीक है। और हजरत मरियम और उनकी माँ का जिक्र है। ईसा और यहया का जिक्र है। कजन्स थे लेकिन भाइयों की मिसल थे। आप देखिए कि ये रिश्ते कितने प्यारे हैं, ख़ास तौर पे अगर इस वक्त भाई और बहन, या भाई भाई और बहन बहन, सारी पॉसिबल है। विरासत में इनका अलग जिक्र है, कलाला के नाम पे, सूरह निसा की आखिरी आयत भी यही है। फिर इसी तरह से आप देखिए कि मूसा को फिरौन के महल में पहुंचने के बाद उसकी माँ से मिलने का एहतमाम किसने किया? बहन ने किया। हजरत उमर की हिदायत का जरिया कौन बनी? तो आपका मेरा क्या फ़र्ज है? बिलीव मी, भाई बहन एक छत तले बड़े होते हैं, लेकिन बाद में अलग अलग घरों में चले जाते हैं, अलग शहरों में, अलग मुल्कों में। इनके दीन की इस्लाह हम बहन भाइयों के और कोई हकूक ना भी दे सके ना। एक तो वो तो जो सिबलिंग्स होते हुए बचपन में, वो तो एक बड़ी सिंपल बात है, लेकिन आप बचपन से ही अगर अपने बच्चों को अपने बहन भाइयों की मोहब्बत देना चाहते हैं, नंबर एक तकाबुल ना कीजिए। अपने एक बच्चे और दूसरे बच्चे या बच्चा बच्ची जो भी, आप इसको अलग से आप समझ लें, एक बड़ा तेज है, दूसरा बड़ा सीधा, एक बहुत आहिस्ता बोलता है, एक बहुत ऊंची बोलता है, तकाबुल ना करें, रिश्ते टूट जाते हैं। तकाबुल में शख्सियतें मसख हो जाती हैं। आपने पैदा किया है, कर लेती हैं अच्छा बच्चा पैदा। अगर आपको अपना एक बच्चा ज़्यादा अच्छा नहीं और दूसरा अच्छा लग रहा है, आदत के नाते से, वैसे मोहब्बत तो सबसे होती है। दूसरी बात देखिए कि बच्चों को कभी आपस में ये ना कहें, खा लो नहीं तो भाई खा जाएगा। सुना है कभी ये जुमला? बच्चों को माएँ अपने दूसरे, मतलब एक बच्चा है वो मिसाल है कि वो मूड ख़राब है उसका, चॉकलेट दी, आइसक्रीम दी, कुछ दी, वो नहीं खा रहा, आप क्या कहते हैं, खा लो नहीं तो दूसरा खा जाएगा। आप उसको दुश्मन बना कर ना पेश करें। फिर भाई बहनों के आपस के ताल्लुकात को बेहतर कराने के लिए आप अपने बच्चों के, अब आप इसको छोटे बच्चों में लेंगे ना तो बड़े होके फिर खुद ही आ जाएगा, आप उनको ये बताइए कि मेरे बात यानी माँ और बाप के बाद सबसे ज़्यादा आपसे प्यार कौन करता है? भाई बहन करते हैं। भाई बहन हमारी शख्सियत का एक हिस्सा होते हैं, उन्हीं के साथ बैठ के लड़े होते हैं, उन्हीं के साथ बैठ के खेलते हैं, खाते हैं, कूदते हैं। जब ये बड़े हो जाते हैं तो फिर भाई बहनों के हकूक हैं कि भाई विरासत में बहनों का हिस्सा ना खाएं। भाई और बहन रिश्ते नातों के करने या टूटने के बावजूद भी आपस में ना टूटें। रिश्ते निभें ना निभें, भाई बहनों के रिश्ते लें ना बहनों के लें ना भाई उनके घर से लें ना लें, खून के रिश्ते नहीं ख़त्म होंगे। दीन की फ़िक्र कीजिए। आपके हर मिसाल है मैंने बोल दी है, अखवान यूसुफ वाले किरदार में यूसुफ ने क्या किया था? ला तसरीबा अलैकुम अल्योम, तुम पे कोई पकड़ नहीं। भाई बहनों में दरगुजर कीजिए, मिट्टी डालें, खून के रिश्ते हैं, कभी इनसे कतई ताल्लुक ही ना करें। ये ना कि हम इनसे नहीं मिलेंगे, हम इनसे अलग वो हमसे अलग। और फिर वही बात है, हमने भाई बहनों के हुकूक क्या रखे हैं, जब उनके बच्चों की शादियां हो तो हजारों का खर्चा करके जाओ और उनकी हर किस्म की रस्म में शामिल हो। खाला ने क्या दिया, सलामी दो जी, फुफ्फो ने क्या दिया, ये करो जी, हम हकूक इनको कहते हैं, ये कोई हकूक नहीं। अल्लाह के नबी ने कोई ऐसी सोशल लाइफ गुजारी होती तो ये कुछ भी ना होता। आप अपने भाई बहन के घर किसी ऐसे मौके पे नहीं जा पाते जबकि सारे दूसरे आए हैं, तो ये कोई शर्म की बात नहीं है। लोग कहते, लोग क्या कहेंगे, मामू नहीं आया, फुफा नहीं, फुफो नहीं आई, ये नहीं आया। ये जकड़बंदियाँ हमारे कल्चर की हैं, इस्लाम इस पे आपको कुछ नहीं करता। हाँ एक चीज़ नहीं बर्दाश्त करता, और वो क्या है कि आप अपने मामले को दूसरों के साथ इस तरह रखें कि उनकी गलत चीज़ों में खामोशी से शामिल होते रहें। ये सबसे बड़ी कतरहमी है। क्या कि रिश्तेदारी का मामला है, यानी रिश्तेदार की खुशी के लिए उसके गलत काम में शरीक हो जाना, ये कतरहमी है। रिश्तेदार हराम माल कमाते हैं सिर्फ इसलिए चुपके से जाकर खा पी लिया और उनको भी ना एहसास कराया कभी ज़िंदगी में कि नाराज़ होंगे, और ये कतई रहमी है। सबसे बड़ी सिला रहमी अपने रिश्तेदारों के, दीन की फ़िक्र कीजिए, दुनिया की फ़िक्र कीजिए, और भाई बहनों में ख़ास तौर पे ये जहन में रखिएगा कि ये खुश होंगे ना अपने घरों में तो आपको याद भी नहीं आएंगे, लेकिन अल्लाह ना करे इनमें से किसी को ज़रा सी सुई भी चुभेगी ना तो सबसे ज़्यादा आपको दुख होगा। ये एक फितरी सी बात है, मेरी नज़र में भाई बहन का रिश्ता है ही ये। दुख में बहुत याद आएंगे, अपनी जगहों पे खुश रहें, आप कहते हैं ये खुश, हम अपनी उम्मीदें न लगाएं। फिर क्या भाइयों के कुछ ज़्यादा हक हैं बहनों पर? जाएंगे तो उधर रहेंगे। देखिए ये कल्चरल बात है ना कि माँ बाप के बाद फिर भाई होते हैं। आप पाकिस्तान जाते हैं या आप इंडिया जाते हैं तो अगर माँ बाप नहीं है तो शायद आप सबसे पहले एक्सपेक्ट यही करते हैं कि आपके भाई के घर आप जाते हैं। आप चार भाई हैं, किसके जाएं? तकाबुल में ना कुछ करें, लेकिन सिला रहमी तो हर एक के साथ है, ताल्लुकदारी तो हर एक के साथ है, लेकिन बाज़ दफ़ा हम अगले को बोझ में डाल देते हैं, नहीं ये ना किया तो लोग क्या कहेंगे, भाई शहर में रहता है आप उधर नहीं गए, किसी और के साथ रह लिया तो बड़ी बुरी बात होगी। ये सब चीज़ें नहीं, लेकिन जो चीज़ आप में बर्दाश्त ना करें वो क्या है, उनकी कोई गलत बात। और अल्लाह ताला हमें एक दूसरे की हिदायत का जरिया बना दे। आखिरी टॉपिक जो ना ही करें तो अच्छा, ससुराली रिश्तेदार। बाज़ लोग ससुराली को इसराइली कहते हैं, गलती से पढ़ते हैं, तो आपकी शीट में तो सही ही लिखा हुआ है। देखिए ससुराल में शौहर को हमने डिस्कस कर लिया, वो सबसे पहला ससुराली होता है, ठीक है। उसके बाद रह गया पीछे कौन? सास और ससुर और देवर जेठ और नंदे, और यही तीन है ना, वो एक ही बात है, सारे ही एक है। देखिए मैं चंद कोड वर्ड बोल देती हूँ। एक तो एक लेक्चर हुआ था अभी, ये लास्ट ईयर ही 2017 में मुझे लगता है, अब तो 18 गुजर गया ना जी, मेरा हेल है 17 के लास्ट में किया था हमने सास और बहू का रिश्ता। बहुत ही ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हुआ था, सासें बहुओं को नहीं थी लाई वैसे कि वो काम लगी हुई है, उनको था पता नहीं आज क्या हो जाना है, लेकिन जब लेक्चर सुन रही थी तो मैं बैठी फ़ोन कर रही थी कि आ जाना घर से, अब काम तो होते ही रहेंगे। वो समझ रही थी शायद आज सासों के जुल्मों की बात होनी है, लेकिन बात म्यूचुअल थी। आप भी सुनिएगा, बहुत फ़ायदा होगा। इसी तरह दामाद और ससुराल, इस पे भी बात हुई हुई है। इज़्ज़त के रिश्ते हैं, मोहब्बत के रिश्ते हैं। आप चाहें इसको समझने के लिए तो किसी ऐसे लेक्चर में एक टॉपिक डाल दीजिए जो यहाँ हो और जहाँ ये सब आ सके। करना है इस पे टॉपिक, करना चाहते हैं। और इंडिया में तो बहुत ज़्यादा प्रेशराइज्ड हैं लोग ससुराल के मामलों में, पता है पाकिस्तानी लोग अपने ससुराल से इतना नहीं डरते जितना इंडिया के डरते हैं। ये मेरी एक प्यार और मोहब्बत की बात है, गलत भी हो सकती है, लेकिन एक बात याद रखे, वो दीन जो हमसायों के हकूक दिला रहा है, जो आपको, आप देखें ना कितनी लंबी लिस्ट है हमारी पड़ी, या आज जहाँ पे ये टॉपिक पूरा हो रहा है हमारा इस वक्त, अगर तो आप देखिए क्या वो ससुराल के हकूक नहीं देगा। और ये बात कहने की को लगती है कि जी ये बताएं कि शौहर अपनी बीवी को अपने माँ बाप की खिदमत पे मजबूर कर सकता है कि नहीं, और वो खुद कपड़े उसके सास के धो ले, बेटा माँ के कपड़े धो ले तो ठीक है, माँ बहू नहीं धुलेगी। सुना मैंने कहानियाँ, सीधी सी बात है, क्या करो? आप में से कोई इसका जवाब दे। एक तर जिगर वाले के ऊपर भी एहसान, और अभी हमने बुजुर्गों के हकूक पढ़े हैं ना, तो क्या सास ससुर बुजुर्ग नहीं होते? बड़े नहीं होते वो, हमसाए नहीं होते? हमने हमसायों के हकूक पढ़े हैं कि नहीं? तो घर में रहने वाले हमसायों से ज्यादा हुए कि ना हुए? ये सिर्फ फतवों की बात नहीं है, ये तकवे की बात है। एक किसी की बात जो उन्होंने पल्ले से बांध ली, कहीं बात सुनी होगी क्लास में और फिर शेयरिंग भी की थी उन्होंने, मैंने उन्हें कहा कि आपका दिल क्या चाहता है कि आपकी भाभी आपकी अम्मी के साथ कैसी हो जो बैक होम आपकी अम्मी को टेक केयर कर रही हैं? तो कहा बहुत अच्छी हो, आप ये चाहती हैं ना, तो आप अपनी सास के साथ जो आपके साथ वेस्ट में रह रही हैं उनसे अच्छी हो जाए। बिलीव मी, उन्होंने ये बात कहाँ सुन ली और फिर उन्होंने अमल किया, और उन्होंने इतना लंबा फिर लिखा अपना फीडबैक कि मैं इस मुल्क में बैठकर अपनी सास से कुछ अच्छा करती हूँ ना, तो उधर से मेरी अम्मी और मेरी भाभी के ताल्लुकात अच्छे होते जा रहे हैं। ये अल्लाह की तरफ से होता है। आप आज किसी के साथ नेकी करेंगे ना, कल कोई आपके साथ करेगा। खासतौर पर शादी के बाद बेटियाँ तो मैके के साथ बहुत टची हो जाती हैं, वो माँ बेटी जिनकी बनती नहीं, दूर जाने पर वही माँ ज़्यादा रोती है। बेटी को भी माँ का फिक्र होता है, भाई बेटे को भी होता है, लेकिन माँ का ज़्यादा फिक्र होता है बेटी को। क्यों होता है, कैसे होता है, इसको आप सब जानते हैं। तो ज़रूरत है इस बात की कि इस रिश्ते में फतवों को ना डाला जाए, अच्छा रखा जाए। एक वीडियो थी, अगर वो रेडी हुई तो ब्रेक के बाद दिखा दें, कि आज जितना ज़्यादा हमारे पास सोशल मीडिया बढ़ गया, हमारा अपने बुज़ुर्गों के साथ कैसा ताल्लुक़ है। लेकिन यहाँ यही करूँगी कि सबकी लिमिट्स हैं, सबके हकूक हैं, अल्लाह ने हक दिया हुआ, कोई बांधी नहीं है, कोई किसी को पकड़ के लाने वाली नहीं। बहू इसलिए नहीं आती कि उसको एक काम वाली बना लिया जाए, और सास ससुर घर की को पोटलियाँ नहीं है कि उनको बेकार माल समझ के क्लोजेट में डाल दिया जाए। इज्जत देंगे इज्जत मिलेगी, प्यार देंगे प्यार मिलेगा। आपके बच्चों की टेक केयर जो आपके उन बच्चों के दादी दादा कर सकते हैं, वो दूसरा नहीं कर सकता। जो मोहब्बत फूफी देती है, मेरा नहीं ख्याल दुनिया में माँ के बाद कोई दे सकता है। बिलीव भी खाला भी नहीं देती, क्योंकि खाला पास नहीं होती, वो तो कभी साल में एक दफ़ा आएंगे मिलने और प्यार प्यूर करके चले चले जाएंगे। लेकिन फूफियों ने तो, वो कहते हैं ना, वो फूफो कौन होती है, बड़ा मज़े का आर्टिकल था कहीं, कभी किसी ने भेजा था, फूफो वो होती है जो आपके गंदे लाली पॉप भी चूस लेती है, फूफो वो होती है जो अपनी सारी पॉकेट मनी आप पे लगा देती है। तो कदर कीजिए, बस इन रिश्तों की कदर करें। कभी कभी बीवियों की खुद नहीं लगती ना अपने ससुराल से, तो बच्चों के दिल में नफरत डाल देती हैं, बस फूफो अच्छी नहीं, दादी अच्छी नहीं, वो तो कभी हो ही नहीं सकती अच्छी। ये ना करें, अपने बच्चों के दिल में अपने ससुराली रिश्तों से नफरत ना डालें। इसी तरह आपस में नहीं बनी तो बच्चों को दादी दादा के खिलाफ कर दिया, और नानी नाना को हमेशा आगे रखना। और मुझे आज तक नहीं समझ आई कि चंदा मामू ही क्यों होता है, चंदा चाचू क्यों नहीं होता, ये चंदा मामू क्यों है? सोचने की बात है ना, क्योंकि माँ के दिल में मामू बैठा हुआ है ना। तो प्यार कीजिए, यकीन करें, मोहब्बत के, वो कहते हैं ना कि मोहब्बत के पैगंबर बन जाए। आपको कुछ निचोड़े ना तो मोहब्बत निचोड़े, इसके बाद आपकी ज़िंदगी का हर रिश्ता अच्छा हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। बाकी रह गए देवर जेठ, पाबंदियाँ हैं, अलहम्बुल मौत, बुखारी की रिवायत है, काला के नबी हम क्या है, यानी शौहर के इसमें हम में याद रखे, देवर भी आता है, जेठ भी आता है, नंदोई भी आते हैं, नंदों के बच्चे भी आते हैं, जेठ जठानियों के बच्चे सब आते हैं। मतलब शौहर की तरफ से जो गैर महरम है ना वो अलहम है। तो आपने फरमाया मौत, क्या मतलब? घर में रहते हुए बेतकल्लुफी हो जाती है, कभी तन्हाई भी होगी, शैतान ज़्यादा बरगलाएगा। तो शरई हदूद और पाबंदियों में रहते हुए इन रिश्तों की इज्जत भी कीजिए, प्यार भी कीजिए, खिदमत भी कीजिए। लेकिन इन बेतकल्फी के नाम पे आप कहना कि देवर तो मेरा भाई है, और जो फजूल किस्म की रसूमात है हमारे कल्चर में, शादी के बाद इतने बड़े देवर को लाके घुटने पे बिठा दें, क्या वो उठाएंगे जब पैसे देंगे? ये बेहयाई भी है और जहालत है। और बीवी की बहन को साली कहकर आधे घर का मालिक कर देना, ये भी जुल्म है। आज हम कई फिल्मों की भाषा बोलते हैं ना, ऐसी फजूल हरकतें हैं। इस्लाम इन चीज़ों में बहुत क्लियर है। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि क़यामत के दिन हमारे ऊपर किसी का भी हक ना हो। और ससुराली रिश्तों में एक आखिरी बात कर देती हूँ, खुदा के लिए अपने शोहरों को उनके मैके से दूर ना करें। आपका ससुराल आपके शोहर का मैका है। अब इसी में ससुराली रिश्तों में क्या मर्दों का भी ससुराल होता है? बिल्कुल होता है। उसकी भी कोई मिसाल है कुरान में। हज़रत मूसा 10 साल तक अपने ससुर के पास रहे, हालांकि बात सिर्फ 8 साल की हुई थी, बकरियां बिचराई उनके घर में रहे। क्या घर दमादी हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। किसी की सिर्फ बेटी है, बेटा नहीं है। वो चाहते हैं कि एक बेटी जो है वो हमारे करीब ही रहे, और वो शादी की शर्तों में ये शर्त रखते हैं कि ये मर्द या लड़का हमारे साथ रहेगा, कोई गुनाह की बात नहीं है। ये अब हम ताने देते हैं। फिर एक और इसमें सवाल नोट कर लें, क्या बेटी के घर से पानी पी सकते हैं, नमक खा सकते हैं बेटी का? बिलीव में ही मुझे किसी ने कहा, मेरी अम्मी सिर्फ इसलिए नहीं आती मेरे पास कि ताने मिलेंगे कि बेटी के घर आएंगे, तो आप होटल में रख लें उनको, आप जो ताना देंगे उनके घर में अपनी माँ को रख लें। ये सब बेकार बातें हैं। तो अल्लाह ताला हमें ऐसे मामलात में सुरखरू करे। अल्हम्दुलिल्लाह, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।